हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज का ये जो वातावरण और 5000 साल पहले नैमिषारण्य में बना हुआ और उससे पहले यमुना जी के तट पर ये जो प्रसंग जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत आभास कॉमन एक चीज है कम से कम, कि यहां सारे ऋषिगण परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद शुरू हो रहा है, यानी 5-6 दिन से न खाए हैं न पिए हैं और न सोए हैं और पूर्ण रूप से हरि कथा में मग्न है। समय की पाबंदी नहीं है, तो कुछ हद तक वैसा ही आज यहां कोई खाया नहीं कम से कम कल रात से 12 बजे के बाद, पिया नहीं है, अच्छे तरह से सो के आए हैं। अब सोने की सो भी जाएंगे तो कोई चिंता नहीं, हरी कथा चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, समय की पाबंदी नहीं है। जो उठना चाहते हैं उठ के, जब जाना चाहते हैं जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। देखेंगे कथा जब तक चलेगा चलेगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी द्वारा ये बहुत सुंदर, सूत गोस्वामी द्वारा ये श्लोक शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये श्लोक के, ये जो प्रसंग है सुखदेव गोस्वामी पधारे हैं, परीक्षित महाराज सब कुछ त्याग कर, घर बार त्याग कर, जानते हुए कि 7 दिनों में मृत्यु आने वाली है, पूर्ण रूप से भगवान से कृष्ण का आश्रय लिए और साधुओं के संग में सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त के मुखारविंद से हरि कथा का पान कर रहे हैं। और इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न, प्रश्न पूछना जीवन का उद्देश्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पर दुर्भाग्यवश हमारे प्रश्न खाना पीना सोना और किस तरह से इस भौतिक संसार में परमानेंटली रहना, ऐसा प्रश्न है। पर वासुदेव कथा प्रश्न जब, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जब शुरू होती है तो मनुष्य जीवन का आरंभ होता है, तो वासुदेव कथा प्रश्न ये कितना लाभदायक है। पुरुषां स्त्रीं पुनाति, तीन प्रकार के लोगों को पवित्र कर देता है, पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है। जो भगवान के अवतरण का उद्देश्य है, भगवान अवतरित हुए, कुंती महारानी कहती है क्यों भगवान अवतरित हुए, श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः तयेव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। भव प्रवाह, इस भव प्रवाह में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भव प्रवाह में हरेक व्यक्ति डूब रहा है, पर जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भव प्रवाह उपरमं, किसी तरह से पार करना। तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है इस भव सागर को पार करना, और वो है तावकम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों का आश्रय। समाश्रिता ये पदपल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्येशो मुरार भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम पदम यत् विपदाम नतीशान। पदम पदम विपदम, ये संसार है ये उस क्षण ही नष्ट हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए जो पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता। तो एव पश्यंती, पश्यंती भगवान को देखना, ये देखना मामूली चीज नहीं है। हम देखते हैं ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं के साथ माता पृथ्वी को सामने रख के हुए गाय के रूप में क्षीर सागर में गए, प्रार्थना किए, कुछ नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, पहले सारे देवताओं ने मिलकर पुरुष सूक्त की उच्चारण की, भगवान नहीं आए। फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, फिर ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान ने सिर्फ आवाज दी, बस भगवान नहीं आए। इतने दुर्लभ हैं भगवान का दर्शन, इतना दुर्लभ है। और वो बड़े कृपा पूर्वक अवतरित हुए आज के दिन 5000 साल पहले इसी धरातल पर, इसी पृथ्वी पर अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तन्माश्रितम् परम भाव अवजानन्ति। मूढ़ व्यक्ति लोग, हम जैसे लोग नहीं जानते हैं, इसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो कुंती महारानी कहती है, तावकम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों का जो आश्रय लेता है वो इस भव प्रवाह को पार कर देता है, जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने यशस्वी रूप से किया। तो कैसे शरण लेना, कैसे? भगवान यहां भागवत के रूप में अवतरित हुए, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित को निमित्त बनाकर भगवान भागवत के रूप में अवतरित हुए, जिस प्रकार वसुदेव और देवकी को निमित्त बनाकर साक्षात अपने स्वयं स्वरूप में प्रकट हुए, इस तरह से सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज को निमित्त बनाकर भागवत के रूप में प्रकट हुए। कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित। जैसे भगवान श्री कृष्ण गए, भागवत का उदित हुआ। भागवत में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो आज के जन्माष्टमी के दिवस पर अगर सुखदेव परीक्षित महाराज जैसी भावना को लेकर भागवत का श्रवण करेंगे तो कानों के द्वारा हम अपने आप को भगवान को दर्शन कर पाएंगे आज के दिन, जिस प्रकार वसुदेव और देवकी ने साक्षात दर्शन किया भगवान का, यह हमें विश्वास होनी चाहिए। और प्रभुपाद जी की कृपा से सुखदेव गोस्वामी का बोला हुआ भागवत का तात्पर्य आज प्रस्तुत है परंपरा में। वही ज्ञान जो परीक्षित महाराज ने 5000 साल पहले सुना, आज वही उतना ही ताजा, उतना ही शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, वही चीज परंपरा की कृपा से हमें भी उपलब्ध है। पर क्या हमारे अंदर परीक्षित महाराज जैसी योग्यता है? नहीं है तो क्या है परीक्षित महाराज ने, परीक्षित महाराज में, जिसके द्वारा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से मुखारविंद से जब कृष्ण कथामृत निकल रहा था तो एक शत प्रतिशत निर्भय हो गए और कहने लगे, जो भी वो मृत्यु चीज है आने दो उसे, तक्षक आने दो, जो भी उस ब्राह्मण के पुत्र ने जो भी बनाया है वो आके उसे काटने दो, मुझे आप हरिकथा गाते रहिए, गंगा जी के तट पर मैं बैठा हूं, भगवान का चरण कमल, क्या ये क्या बोलते हैं, चरणामृत है, आप सब संत महात्मा यहां बैठे हुए हो और सुखदेव गोस्वामी जैसे हरि कथा सुना, और क्या चाहिए मुझे, कृष्ण की मौजूदगी का अनुभव अनुभूति कर रहे थे। तब हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो सकेगा। तो आज मैं सोचा कि पहले 15 श्लोकों में, दशम स्कंद की पहला 15 श्लोक जो है, इसमें परीक्षित महाराज की जो भावना है ये बताया गया है। क्या भावना थी जिसके कारण पूर्ण रूप से वो हरिकथामृत का आश्रय ले पाए, जिसके कारण जीवन की परिपूर्णता, भगवान का दर्शन कर पाए, दर्शन का लाभ जो है, क्यों हम दर्शन करना चाहते हैं, जैसे देखने के लिए बस, बहुत आनंद ले, नहीं, दर्शन इसलिए करना चाहते हैं, भवतो दर्शनम अस्याद अपुनर्भव दर्शनम, आपका जिसका दर्शन हो गया अपुनर्भव दर्शनम। तो परीक्षित महाराज के ये जो अंतिम जो कुछ दिन थे, इसका अगर थोड़ा ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे तो उनकी चेतना क्या थी जिससे उन्होंने भागवत का श्रवण किया। तो आज के दिन जन्माष्टमी के दिन अगर हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज की चेतना क्या थी, उनकी भावना क्या थी, उनका विचार क्या था, किस प्रकार से वो सोच रहे थे, और वो तो समुद्र जैसे गुण थे उनके अंदर, उनका एक बूंद, उस सिंधु का एक बिंदु भी हमारे जीवन में प्रवेश हो जाए तो शायद आज हम प्रण लेंगे भगवान के सामने कि प्रभु ऐसे गुण हमारे जीवन में आ जाए जिसके द्वारा जब भी हम भागवत का श्रवण करेंगे प्रभुपाद जी की कृपा से उनके तात्पर्यों में, जो वही 5000 साल के तत्व को आज भी उतना ही ताजा और शुद्ध रूप में दे रहे हैं, तो हम भी शायद परीक्षित महाराज जैसे उसका फायदा उठा पाएंगे। तो इसकी शुरुआत प्रथम स्कंद में होती है, दशम स्कंद में आने से पहले थोड़ा पीछे जाएंगे। ये 19वां अध्याय, अंतिम अध्याय भागवत का, प्रथम स्कंद जो है भागवत श्रवण करने की योग्यता क्या है बहुत सुंदर से समझाता है। तो परीक्षित महाराज, जैसे आप लोगों को मालूम है, एक दिन ऐसे ही शिकार के लिए निकले और ऐसे घूमते फिरते थके हुए थे, प्यासे थे, भूखे थे। शमिक ऋषि के आश्रम में गए और वहां कहा कि कोई साधु बैठा हुआ, भाई पानी दे देना थोड़ा। पूरे विश्व के सम्राट जिनको अगर कोई आ रहा है तो सब कुछ छोड़ के उन्हें सम्मान देकर बुलाना चाहिए। इस छोटे नगर का एक कोई एक बड़ा व्यक्ति आता है तो हम सब कुछ छोड़ के आते हैं, प्रमुख लोग आते हैं और उसको स्वागत करते हैं उस व्यक्ति को, जो तो 3 या 5 साल अगर सौभाग्यशाली है तो रहेगा उस पदवी पर, उसके लिए हम लोग सब कुछ छोड़ के आते हैं। और यहां पूरे विश्व के अनराइवल्ड एम्परर, ऐसे सम्राट, एक प्रधानमंत्री अगर आज आ जाए यहां अनाउंसमेंट करके कि मैं आ रहा हूं, क्या कुछ हम लोग नहीं करेंगे। और विश्व के सम्राट आ रहे हैं, और न केवल सम्राट, शुद्ध भक्त, राजर्षि उत्तम। अपराध है अगर ऐसे व्यक्ति को ठीक तरह से वहां स्वागत नहीं करेंगे। तो जो भी हो, उसका कर्तव्य था कि ऐसे महान व्यक्ति को बड़े उत्साह पूर्वक और बड़े आदर पूर्वक सत्कार करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने वो भी अपेक्षा नहीं की, ठीक है तुम्हें स्वागत नहीं किया, चंदन नहीं लगाया, हार नहीं पहना, अरे मैं मांग रहा हूं पानी दो भाई, पानी मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा, और मुंह खोल के मांग रहे। उनकी गलती नहीं थी, क्रोधित होना कोई बड़ी बात नहीं। बोले इतना ठंडा रिसेप्शन मिला मुझे, बड़ा कोल्ड रिसेप्शन, अंग्रेजी में कहते हैं कोल्ड रिसेप्शन, मतलब आ रहे हो कोई देख भी नहीं रहा, आराम से बैठे हुए, सब टीवी देखते बैठे हुए, कोई बड़ा व्यक्ति आया और आप सब लोग इधर बैठे, एक मिनट बैठो आप, कोल्ड रिसेप्शन। तो परीक्षित महाराज बोला ठीक है, उसका कोल्ड, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कोल्ड रिसेप्शन, मैं भी तुमको ठंडे, सांप पहले ही ठंडा होता है, वो मरा हुआ सांप को गले में लगा दिया। बोले ठीक है जा, यही तुम्हारे लिए सजा, जान से नहीं मार, जान से भी मार देते तो कोई पाप नहीं होता। ऑफकोर्स परीक्षित महाराज जैसे व्यक्ति कभी नहीं करेंगे, शुद्ध भक्त हैं, महान भक्त। तो एक छोटी सी एक्चुअली गलती बहुत बड़ी नहीं थी, इतने महान व्यक्ति के लिए किसी को थोड़ा ऐसा, कितने कितने बड़े व्यक्ति क्या क्या नहीं करते और माफ हो जाता है, माफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है बड़े आदमी ये सब करने के चक्कर में थोड़ा हो जाता है बेचारा, ठीक है कौन सा बड़ा काम किया उसको, मार दिया, थप्पड़ मारा, नहीं गुस्से में क्या करूं क्या, ठीक है सांप मारा, ठीक है डाल दिया, बस चले गए वहां से। पर जैसे बाहर निकले, देखिए गलती कोई भी करता है, गलती करनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक महात्मा और एक मामूली आत्मा में अंतर क्या है? गलती दोनों करते हैं, पर उस गलती के परिणाम स्वरूप किस प्रकार से प्रतिक्रिया, यह एक महात्मा को महात्मा बनाता है। यहां परीक्षित महाराज के प्रतिक्रिया देखिए। इसीलिए परीक्षित महाराज राजर्षि सत्तम क्या कह रहे? सूत उवाच, सूत गोस्वामी कहते हैं, महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यम विचिन्त्य आत्म विचिन्तयन आत्मकृतम सुदुर्मनाह अहो मया नीचम अनार्यमत्कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा ने अनुभव किया कि उसने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है, फलस्वरूप वह अत्यंत उदास था। सुदुर्मना में डिस्ट्रेस्ड, बहुत दुख हुआ, क्या किया मैं, छह नहीं करना चाहिए था मुझे, कोई बड़ी गलती नहीं थी वो, और जस्टिफिकेशन कर सकते थे, अरे ऐसा कैसा उसने क्या किया, इतना तो देना चाहिए सम्मान, और एक्चुअली गलती थी वहां की ओर से, पर सुदूर मना उन्हें दुख लगा, छे मैं नहीं करना चाहिए था, भले वो कुछ भी करे, वो शायद वो बेचारा ध्यान में लगाए वो सचमुच में वह निर्दोष ब्राह्मण हो, मैंने सोचा ढोंग कर रहा है, उसे अहंकार हो गया है और कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, ये तो क्षत्रिय है, इसको क्या सम्मान देना चाहिए, ऐसा सोचकर मैंने इसको किया, और शायद वो निर्दोष ब्राह्मण हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुदूर मना अहो मया नीचम अनार्यवत कृतम, अहो प्रायश्चित, अहो मना नीचम, नीच कार्य किया, अनार्यवत ये आर्य व्यक्ति का सभ्य व्यक्ति का लक्षण नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, भले वो जो भी करे। इसके तात्पर्य में रूपा जी लिखते हैं, ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। उत्तम व्यक्ति को स्वाभाविक है, कुछ भी अगर वो छोटी भी गलती करता है उसको पश्चाताप होनी चाहिए कि नहीं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक पापों से उबर जाता है। पश्चाताप जो है, पश्चाताप की आग में सारे पापों के जो फल हैं जल के राख हो जाते हैं। पर अगर पश्चाताप करने के बदले हम कहेंगे कि नहीं 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 उसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, तो ठीक है उसको सजा मिले, पर आपका पाप ऐसे ही बना रहेगा। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं, भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाते हैं। तो यह परीक्षित महाराज की महानता थी, गलती हुआ और वो गलती भी गलती नहीं था, भगवान ने कराया, क्योंकि जब तक परीक्षित महाराज रहेंगे कली को अंदर प्रवेश ही नहीं घुसने दे रहे हो, और कली का समय आ गया है, कली बोल रहा है भगवान आप बोल रहे हो कली युग है, क्या युग है, मैं बाहर ही खड़ा हूं अभी तक, घर के अंदर ही छोड़ नहीं रहा, ये ऐसा राजा है, इसके होते हुए चार नियम, कोई सूंघता भी नहीं है इसके बारे में, कौन करेगा ये सब। तो भगवान को परीक्षित को हटाना था, नहीं तो कली आ ही नहीं सकता अंदर। ऐसे राजा आज कोई दिल्ली में बैठा उसे ये नहीं मालूम कि औरंगाबाद क्या बोलते हैं गाजियाबाद में क्या हो रहा है। परीक्षित महाराज बैठे हुए हस्तिनापुर में पूरे विश्व में कली प्रवेश नहीं कर सकता था, ऐसे नियंत्रण करता, ऐसा उनका सिस्टम था, ऐसे सम्राट थे वो। तो भगवान को कहना पड़ा कि नहीं इसे तो निकालना ही पड़ेगा, पर और साथ साथ में भगवान की इच्छा थी कि जल्द से जल्दी भगवत धाम आ जाए, जैसे महाराज चित्रकेतु को विद्याधर योनि से, फिर से उसको राक्षस योनि के द्वारा, कैसे? पार्वती के शाप द्वारा। वो शाप शाप नहीं था, वो तो वरदान था, भगवान जल्दी जल्दी बुलाना चाहते थे, तो शाप नहीं था, वरदान था। और चित्रकेतु महाराज समझ पाए कि ये शाप नहीं है, तो वरदान है। धन्यवाद माते, ये आप नहीं कह रहे, भगवान आपके द्वारा कहला रहे हैं अपनी योजना बनाने के लिए, और मैं उनका दास हूं, जो भी योजना है मैं करूंगा। परीक्षित महाराज ने इसी भावना से उसे स्वीकार किया। द्विज शाप रूपो, भगवान प्रकट हुए द्विज शाप के रूप में, तो उनको मैं आदर करना चाहता हूं। प्रभुपाद जी जब कलकत्ता में थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो बॉम्ब फूट रहा था, बड़े बड़े बॉम्ब गिर रहे, ढूम 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 सब। और प्रभुपाद जी कचौड़ी बना रहे थे, और बोले कृष्ण इस बॉम्ब के रूप में आएंगे तो तैयार होना चाहिए मुझे। उनको कचौरी ऑफर करके बॉम्ब हरी बोल विश्वरूप दर्शन, घोर रूप दर्शन। तो द्विजशाप रूप, तो परीक्षित महाराज का यह लक्षण है कि सबसे पहले उनको प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ। फिर कहते हैं कि ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलनात्। राजा परीक्षित ने सोचा भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे निश्चित रूप से आशंका है कि निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। उन्हें मालूम था कि मैं गलत काम किया हूं, और निश्चित रूप से भगवान के नियमों की अवहेलना करने के कारण मुझे सजा मिलने वाला है, क्योंकि भगवान का नियम परफेक्ट है, कोई नहीं बच सकता, कोई भी हो तो ठीक है, पर किस तरह से उनकी उसके लिए तैयारी की है उन्होंने? क्या कवच पहना? नहीं। अब मैं बिना हिचकिचाहट के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। गुड, जो भी वो शाप है, जो भी वो उसका परिणाम है, वो आ जाए, उसे स्वीकार करने के लिए मैं इच्छुक हूं। इसको कहते हैं तपस्या। प्रायश्चित मतलब जो मैंने पिछले करोड़ों जन्मों का पाप किया है, प्रायश्चित करना, प्रायश्चित से पिछला पाप जल जाता है। और तपस्या क्या है? सामने वाले आने पापों से बच के रहना, फिर से उलझ नहीं जाना उसमें। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के तात्पर्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक का तात्पर्य में है। वही शक्ति, भगवान की जो शक्ति है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका, एक ही शक्ति है श्रीमती राधारानी, वही शक्ति अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियों के रूप में कार्य करती है, और वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की तीन शक्ति, अंतरंग बहिरंग और तटस्था शक्ति, और अंतरंग को बहिरंग, बहिरंग को अंतरंग बना सकते हैं। वे इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं, इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो चाहने वाले जीवों को मोहने के कारण काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के रूप में शमित हो जाती है, फिर वही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। देखिए, जब दुर्योधन ने इनको भगा दिया घर से, विदुर को, महात्मा विदुर को, तो दुर्योधन के ऊपर बहिरंगा शक्ति काम कर रही थी, महामाया, पर वही शक्ति, क्योंकि विदुर ने सही तरह से उसको देखा, अंतरंगा शक्ति के रूप में उसको कार्य किया और बोले बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं इस मौके को पूरे यात्रा में, मतलब सारे पवित्र स्थानों की भ्रमण करने में मैं निकालूंगा। निकल गए वहां से, भगवान की कृपा के रूप में देखे। तो इस तरह से पश्चाताप और तपस्या, पश्चाताप किए और फल स्वरूप तपस्या करने के लिए स्वीकार थे, कुछ भी बोलो मैं करने के लिए तैयार, किंतु उनके हां। और फिर कहते हैं मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फल स्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूं। मैंने अवहेलना की एक ब्राह्मण की, एक भक्त की, तो मैं सबसे बड़ा पापी और अशिष्ट हूं, अनसिविलाइज्ड। अतएव मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम और मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि के तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में मैं ऐसे अशुभ विचारों से मार्गदर्शित न हो। तैयार थे वो कुछ भी आने के लिए। अच्छा, और एक चीज है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें लिखते हैं, अगर राज्य चला जाए, राज्य अगर दहतु अभद्रस्य, पूरा राज्य मेरा भस्म हो जाए, उसका मतलब क्या कि पूरा उनका राज्य भस्म हो जाएगा तो ब्राह्मण भी जल के राख हो जाएंगे, उस राज्य में जितने सारे गाय हैं वो भी जल के राख हो जाएंगे? नहीं, उनका मतलब यह था कि मेरे मुझ पर आए वो समस्या और किसी पे नहीं आए, मेरे परिवार के लोगों पर भी नहीं आए। क्योंकि अगर हम पाप करते हैं तो प्रभुपाद लिखते हैं किंतु उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है, इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि वह विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। मेरा राज्य मुझसे चला जाए, मेरा धन संपत्ति मुझसे चला जाए, मेरा ईश्वर मुझसे चला जाए, सिर्फ मैं गलती किया हूं मुझ पर आए और किसी को इससे तकलीफ ना हो, यह उनकी इच्छा थी। और तब क्या हुआ, महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि सारा राज्य, उनका बल तथा उनका कोष यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। अगर वो ब्राह्मण्य हिताय च, भगवान का अवतरित इसके लिए है, अगर उसी के ऊपर मैं दोष कर रहा हूं सारे धन संपत्ति और शक्ति से, तो वो ऐसा शक्ति जल के राख हो जाए, भस्म हो जाए, नहीं चाहिए मुझे। जहां कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना और गोरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। सारे जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देह गेह जो कि छुम और पिलुं थुआ पदे नंद किशोर, अगर नहीं है तो बोझा है, चल के राख हो जाएगा तो अच्छा है। अब फिर क्या कहते हैं, जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। सोच ही रहे थे कि इसका गलती है, मैं गलती किया हूं, अब मुझे सजा मिलनी चाहिए, जो भी मिले आने दीजिए। और तुरंत एक ब्राह्मण भाग भाग के आया और कहा कि शमिक ऋषि ने बहुत पश्चाताप करते हुए ये बताया है कि अभी उनके मूर्ख पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का शाप दे दिया है, ब्रह्मशाप, जो मुनि का पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार तक्षक सर से काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। देखिए दृष्टिकोण कैसा था महाराज परीक्षित का, इस पश्चाताप के कारण जो भी भगवान ने भेजा, जिस तरह से भी, उस रूप में उसको बड़ी कृतज्ञता पूर्वक, तत्तेनुकंपम सुषमिक्षमाण भुंजान एवात्मकृतम विभाकम हृद वाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेश दाय भाव। जब अच्छी चीजें आते हैं तो भगवान की खास कृपा है, पर जब ऐसे ब्रह्मशाप, 1-7 दिन के अंदर जो कुछ भी पूरे जिंदगी भर मैंने किया है खींच लिया जाएगा सब कुछ, क्या उस समय हम हरि बोल क्या कृपा है कह सकेंगे? राजा ने इस शुभ चम इसे शुभ शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत भक्त के रूप में वह जान सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि वह सांसारिकता के चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक विरक्ति का कारण था। पहला पश्चाताप, दूसरा जो भी सजा है उसको बड़े प्रेम से आतुरता से स्वीकार करना, और तीसरा किसी और को दोषी नहीं ठहराना, उसका कारण हुआ, इसके कारण मुझे हुआ नहीं, बल्कि हालांकि परीक्षित महाराज का कोई गलती नहीं था और मूर्खता के कारण उस बालक ने बिना कोई सोचे समझे अहंकार से वो शाप दिया था, पर परीक्षित महाराज ने इतना भी दोष उस ब्राह्मण बच्चे को नहीं दिया। अब बोले कि नहीं, ये मेरी ही गलती है और भगवान कृपा पूर्वक बड़े प्रेम से मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, इसे मुझे सीखना है, कुछ तो सिखाने के लिए दे रहे हैं, अब मैं इसे कैसा स्वीकार करूं। इसीलिए वो द्विज शाप के रूप में भी भगवान का दर्शन कर रहे थे। और हम हमारा उल्टा है पूरा, हमारी अपेक्षा बहुत चीज है, उसमें थोड़ा भी कम आ जाए, ऐसा क्यों किया, मैं इतना भक्ति कर रहा हूं, भगवान दिखना चाहिए मुझे, सामने आके खड़े होना चाहिए हर रोज। और यहां शाप के रूप में आए तो भी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, यही चाहिए मुझे। उन्हें मालूम है भगवान को, जब तक ऐसे थप्पड़ नहीं मारेंगे मैं नहीं सुधरने वाला, इसलिए सही तरह से मुझे खींचने का ये भगवान ने योजना की है। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भव सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सु अवसर है, मनुष्य जीवन उसके लिए है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष या स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम जाने के लिए तैयार करती है। एक्चुअली ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और वर्णाश्रम में ऐसा ब्रह्मचारी ट्रेनिंग, गृहस्थ सारा संभाला, फिर जैसे 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 50 साल के ऊपर आया थोड़ा तैयारी करने के लिए रेडी। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब क्या, अभी आजकल वन तो नहीं जा सकते, वन है ही नहीं, सब काट दिए उधर। वानप्रस्थ का मतलब अपनी प्रचार सिर्फ घर को न रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम, अपने प्रचार की जो ये बढ़ाना, अब मुझे मग्न होने दो, ज्यादा भगवान की सेवा और कम शरीर और उनके संबंधित चीजों की सेवा, थोड़ा थोड़ा कम होते जाना चाहिए और प्रचार सेवा बढ़नी चाहिए, ये वानप्रस्थ है एक्चुअली। और संन्यास मतलब इतने व्यस्त हैं हम लोग पूरे प्रचार में कि दूसरी चीज वही लोग संभाल लेंगे अभी सब, वो संन्यास है। भगवान छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, कौन संन्यासी, अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च। प्रभुपाद जी के जब तीन गृहस्थ शिष्य लॉस एंजलिस से, अरे सैन फ्रांसिस्को से उनको भेज दिया लंदन में, और उन्होंने जो किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत सारे जो सन्यासी शिष्य दे जो नहीं कर पाए लंदन में, ये तीन गृहस्थ शिष्यों ने किया। और प्रभुपाद ने कहा ये तीनों गृहस्थ जो हैं ये सन्यासी के बराबर है, क्योंकि इनका अपना जीवन है ही नहीं कुछ, पूर्ण रूप से अपना जीवन प्रचार हेतु लगा दिया। बोले ये सन्यासी, इनमें और सन्यासी में कोई अंतर नहीं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म, जो भी जिम्मेदारी उसके निभा रहे हैं, कब तक निभाओगे, तैयारी करो, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। और जैसा जैसा परीक्षा पास आता है आओ सब चीज छोड़ो, पढ़ाई बढ़ा, पता नहीं मृत्यु कब आएगा, सरप्राइज टेस्ट, टीचर बोलेंगे बच्चों सब थैली साइड में रखो, आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट, बताया नहीं था कल, अरे ऐसा थोड़ी होता है, पूरा जीवन तो वही नोटिस दिया था, स्कूल किस लिए आते हो, पढ़ाई करने के लिए, होमवर्क किस लिए जाता है, घर में काम करने के लिए, बार बार बोल के मैं नहीं दूंगी टेस्ट, तो ऐसे देवी माया देवी भी पता नहीं कब हमें दे देगी, बोले सरप्राइज टेस्ट, चलो तैयार हो जा, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी निश्चित पूर्व सूचना नहीं दी जाती। परीक्षित महाराज को कम से कम 7 दिन का परीक्षा का नोटिस था, तैयारी करो भाई, पर हमें शायद वो नहीं मिलेगी। सबों के लिए अवश्य, पर मृत्यु सबों के लिए अवश्य भाई है। मूर्ख लोग मृत्यु के इस ध्रुव तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी की उपेक्षा करते हैं। ये खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाशविक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसे ही चला गया, निद्रे आहृते नक्तम विवाये न चवावय दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने में। यस, कर्तव्य निभाना चाहिए पर लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए, लक्ष्य की तैयारी होते रहनी चाहिए। तो क्योंकि परीक्षित महाराज ऐसे सुसंस्कृत परिवार में उनका जन्म हुआ था, पांडवेय पांडव के कुल में जन्म लिए थे, उनको सुशिक्षित शिक्षित थे वो, उन्हें मालूम था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करनी चाहिए अंतिम काल में। तो जैसे नोटिस मिला तैयार थे वो। क्यों? क्योंकि अपना जिम्मेदारी भी भगवान की सेवा के रूप में ही निभा रहे थे और इसीलिए जब भी नोटिस आया तैयार थे वो। महाराज परीक्षित आत्म साक्षार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। देखिए, उनको इतना मालूम था कि जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है, कृष्ण के प्रेम भक्ति, प्रेमा अपमार्थो महा। वर्णाश्रम जो भी हम लोग धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमये वही केवल। भगवान के प्रति भक्ति आसक्ति प्रेम बढ़ रही है या नहीं? अगर नहीं बढ़ रही है, श्रमये वही केवल हम आपका सारा कार्य। तो हमें हमारा जीवन ऐसा बैलेंस करना है, हाँ निभाना है सारे जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से, एक गलत उदाहरण न मिले समाज में। ये कृष्ण भावना का मतलब लापरवाही, बेजवाबदारी नहीं, पूरा जवाबदारी निभाया पर जवाबदारी में इतने मग्न नहीं हो गए कि जीवन का सब सर्वोच्च जवाबदारी उसमें चूक गए, वो नहीं होनी चाहिए। एक बार एक लड़के को उनके पिताजी ने गांव से भेजा कुछ काम कराने के लिए शहर में, बंबई में जाके ये काम करा के आ, कोर्ट कचहरी का कुछ काम था, बोले करा के आ जाना 3 दिन के लिए, बड़ा कोर्ट कचहरी का काम टाइम लगता है, 3 दिन का पैसा दिया था। और ये आया 3 दिन के बाद वापस लौटा, लौटने के बाद पिताजी ने पूछा, बेटा काम हो गया? कौन सा काम? वो कोर्ट कचहरी। पिताजी इससे पहले सुनो, मैं बंबई में कहां कहां गया था मालूम? गेटवे ऑफ इंडिया देखा, मैंने चौपाटी गया, वहां भेलपुरी खाया, वहां ये किया वो किया, अरे बंबई क्या सा? बोले वो ठीक है, काम जिसके लिए भेजा था किया कि नहीं? वो एक चीज भूल गया और सब करके आया हूं, ये देखो फोटो, ये गेटवे ऑफ इंडिया, क्या सुंदर दृश्य है, ये क्वींस नेकलेस है, ये वो है, ये वो है। अरे जिस लिए भेजा था वो नहीं किया, पूरा पैसा खर्च करके 3 दिन रह के आया। इस तरह से इतने सारे जिम्मेदारियां निभा रहे हैं पर किस लिए निभा रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना दुनिया चलेगा ही नहीं, वाह कोई आ नहीं है, कोई रहना नहीं होना कुछ नहीं फर्क पड़ता। कुछ लोगों को पहले लगता था ये प्रधानमंत्री चली गई तो क्या होगा, क्या हुआ, चल रहा है दुनिया, क्योंकि कोई नहीं चला रहा है, चलाने वाले कोई और है। हम अपने आप को एब्सोल्यूटली इंडिस्पोजेबल इंडिस्पेंसेबल ऐसा कुछ नहीं। ऑफकोर्स जब तक हमारी जिम्मेदारी दी गई है निभा रहे हैं, पर साथ साथ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसलिए मनुष्य योनि मिली है उस पर अगर लापरवाही कर दे तो नहीं नहीं मैंने ये किया वो किया वो किया, सबको बच्चों को बड़ा बनाया, फसला सब चाप किया, भक्ति किया गया, अरे वो एक चीज भूल गया प्रभु, अरे आजकल तेरे को मनुष्य योनि मिला, मेन चीज तो इसीलिए भेजा था तुझे, वो एक तूने नहीं किया। फिर कहते हैं महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सिर्फ भक्ति, केवल भक्ति और कुछ नहीं, भगवान को प्राप्त करना है, ये था महाम अगर भगवान को प्राप्त करना है, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधोर्चुने या तुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंत। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार के अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा के नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों के बाद को मात करने वाली है। कभी कभी हम लोग दूसरे विधि विधानों में अटक जाते हैं, अलग कार्यों में, कर्म कांड में, ज्ञान कांड में, योग कांड में इधर उधर घुस जाते हैं, पर हमें मालूम होनी चाहिए कृष्ण भक्ति सर्वोच्च उपलब्धि है। उन्हें मालूम था और इसीलिए समय आने पर महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्मनिष्ठा के कारण पहले से ही इन सारी सूचनाओं से अवगत थे, और इन चीजों को अवगत होना और अवगत करना हमारा कर्तव्य है। गुरु न सस्यात्, सुद्रो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यात्, न पतिम न सस्यात्, नमो चाहिए तत्समुपेत मृत्यु। हम खुद अवगत होना चाहिए कि भगवान की भक्ति प्रामुख्यता है, सब कुछ दूसरी जिम्मेदारियां सेकेंडरी, प्राइमरी इज मई चानन्य योगे न भक्तिरव्यभिचारिणी। तो अवगत होना और अपने अपने ऊपर जो निर्भर है उनको अवगत करना, ये हमारा, और करने के लिए जो जरूरी है वो करना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर इसमें चूक गए तो हमने अपनी जिम्मेदारी में हम चूक गए। इस प्रकार पांडवों के योग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को अर्पित करने के लिए वह गंगा नदी के तट पर बैठ गया, क्योंकि एकमात्र कृष्ण की भक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। इसमें एक बहुत सुंदर चीज है जो ध्यान देने योग्य है। जब उन्हें पता चला कि मृत्यु आने वाली है, परीक्षित महाराज ने दो चीज किया, एक मुकुंदांग्री अनन्य भावो, मुकुंदांग्री अनन्य भावो, भगवान के चरण को अनन्य भाव से शरण ली और मुक्त समस्त संगह और सब चीजों को त्याग दिए, परिवार घर समाज बड़ा जिम्मेदारी जो भी था सबको त्याग दिए और मुकुंदांग्री अनन्य भावो। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं, समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ क्या है। मुक्त समस्त संगो, तो समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे पाप न करना, भविष्य में पाप नहीं होना चाहिए मेरे से। पाप से मुक्त हो जाओगे तो आप ऑलरेडी मुक्त हो, पाप से लिप्त, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करो या लिप्यते न स पापे, पाप में लिप्त हो जाने से पुनरपि जननम, जन्म में अटक जाते हैं हम लोग। तो मुक्त संग यानी पाप से मुक्त होना और अनन्य भाव से कृष्ण का, भगवान के चरण कमलों का लेना। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना। देखिए ठीक है अभी हम कृष्ण भावना में आ गए, पर करोड़ों जन्मों का पाप और इसे आने से पहले जो उल्टे सीधे काम किए वो सब कौन करेगा, क्या करेगा, क्या होगा उसका। तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे, मुकुंदांग्री अनन्य भावो, तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और समस्त मुक्त संघ का मतलब है आगे के पाप से बच गए, पीछे के पाप से शुद्ध हो गए, आगे पाप नहीं। तो क्लियर हो गया ना रास्ता, क्लियर अकाउंट हो गया, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट सब खाली हो गया, अकाउंट क्लोज। इसीलिए जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें ये दो चीज कहा जाता है, दो प्रमुख चीज, 16 माला जप करो ध्यान पूर्वक जितना हो सके उतना, कम से कम अनन्य भाव, अनन्य भाव से, अन्य विचार नहीं होना चाहिए कम से कम उस समय, अनन्य भावो भगवत अंग्री। और फिर कहते हैं कि चार नियम का पालन करो जो फिर से पाप योनि में घुसाएगा नहीं तुमको, पुनः पुनः क्या बोलते हैं कुंजर शौचवत, फिर से वही पाप कार मत करो, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं। तो पश्चाताप मतलब कृष्णांग्री अनन्य भावो शरणम, 16 मावा जप, क्यों, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, करोड़ों जन्मों का पाप जो संचित रूप में हमारे हृदय में बैठा हुआ है सब कुछ नाश हो जाएगा, चिंता मत करो आप उसके बारे में, भले पिछले जन्मों में और इस जन्म में पिछले कृष्ण भावना में आने से पहले करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या किया हुआ, कोई चिंता नहीं, यानी का नीचे पापा नहीं, ब्रह्म हत्या जाना, चलो भक्ति करो बस, चिंता मत करो बस, प्रेम से तुलसी पूजा करो बस, हर रोज सारे चीज तुलसी कृष्ण प्रेयसी, हमको तुलसी से लेना देना नहीं, ऑफकोर्स नहीं कहना चाहिए ऐसा, क्यों, कृष्ण प्रेयसी, हमको कृष्ण से लेना देना है, कृष्ण के लिए जो अनुकूल से संकल्प हो प्रतिकूल से वर्जन। तो हम ये माला इसलिए करते हैं कि करोड़ों जन्मों का पाप मिट जाए, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो क्लेशाग्नि शुभदा। और ये चार नियमों का व्रत क्यों लेते हैं, कि सामने आने वाले में फिर से अकाउंट में डेबिट नहीं आ जाए, चलो इस तरह से अकाउंट क्लियर। तो भगवान के चरण कमलों में पूर्ण अनन्य भाव से ध्यान लगाए और फिर व्रत लिया, समस्त मुक्त संग, क्योंकि भौतिक संसार ऐसा है, जानो या न जानो पाप हो ही जाता है, जहां अग्नि है वहां धुआं होगा ही, ऐसा है, कहीं अग्नि है इतना भी प्रज्वलित अग्नि हो थोड़ा तो धुआं है, इसी तरह से इस भौतिक संसार में भौतिक कर्म करते करते थोड़ा बहुत पाप लग ही जाता है, तो हर रोज शुद्ध करना पड़ेगा हमको, और एटलीस्ट कम से कम स्थूल रूप से पाप नहीं करेंगे ये चार नियमों का पालन करते हुए। तो इसको गंभीरता से लेना मतलब कृष्ण के चरण कमल को स्वीकार करना, अपने हृदय में अवतरित होने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। फिर उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। तत्रोपजगमुः भुवनम पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संतः। देखिए जब पूरे विश्व के सम्राट थे महाराज परीक्षित, जब उनको शाप मिला 7 दिन में शरीर छोड़ने का, पूरे ब्रह्मांड में संदेश फैल गया, दिस इज कम्युनिकेशन, क्या हमारा कम्युनिकेशन है, जब चाहिए नेटवर्क आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ नेटवर्क के बाहर, डंडी कम हो गया, खत्म, ये कम्युनिकेशन है। ब्रह्मांड में जितने सारे संत महात्मा थे, राजर्षिगण, देवर्षिगण, महर्षिगण, सब आने लग गए, क्यों, परीक्षित महाराज का दर्शन करने, और मालूम था कि सुखदेव गोस्वामी वहां आने वाले हैं, भागवत कथा होने वाली है, ऐसी भागवत कथा जो पूरे ब्रह्मांड में बार बार नहीं होने वाली है, ये ओरिजिनल भागवत सप्ताह, और इस सप्ताह में जो भी भाग लेने वाला है सबका नाम भागवत में आने वाला है। यहां आ गया, इसके वक्ता, इसके प्रचक और इसके श्रोता। तो तुरंत पता लग गया, पूरे ब्रह्मांड में पता लग गया कि ये घटना होने वाली है। अब ये लोग तीर्थ यात्रा के बहाने, स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता, अरे तीर्थों को तीर्थ स्थान बनाने वाले पुण्यात्मा, गंगा जी तीर्थ स्थानों में बहती, हम गंगा में स्नान करने जाते हैं, हम जन साधारण गंगा में क्यों स्नान करने जाते हैं? हे मैया धो दे मेरा पाप, और सारे कचरा वहां छोड़ के आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसा छोड़ते हैं, हम अपने सारे पाप छोड़ देते गंगा में। गंगा को वही भय था गंगा जी, मैं गुजा सब डंप करके चले जाएंगे अपना गंदगी, मेरा क्या होगा? तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वंतस्थेन गदाव्रतः, जब ऐसे महान पुण्यात्मा वहां आएंगे और स्नान करेंगे तो उनके स्पर्श से तो जितनी सारी मैल है, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुम, चिंता मत करो। तो ऐसे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संत, तीर्थ स्थानों को पवित्र करने वाले गंगा के स्नान बहाना लगाकर परीक्षित महाराज का दर्शन करने वहां आ गए। अरे गंगा जी तो हरिद्वार में भी बहती, वहां क्यों नहीं गए? बद्रीनाथ में बहती, वहां क्यों नहीं गए? दिल्ली में क्यों आए? हस्तिनापुर में क्यों आए? क्योंकि यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है जो पूरे विश्व भर में, ब्रह्मांड भर में प्रसिद्ध घटना होने वाली है। हमारे इस्कॉन में भी कभी कभी कोई घटना, कभी कभी पूछता हूं रथ यात्रा कैसे हुआ, अरे क्या हुआ, तीन महाराज लोग आए थे, ये महाराज, ये महाराज, वो महाराज, मतलब इतने लोग आए, मतलब अच्छा था। मैं पूछ रहा था इधर, जब पंच तत्व का इंस्टॉलेशन हुआ, दैट वाज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द होल मिलेनियम, 10,000 साल में नहीं देखने को मिलने वाला ऐसा चीज, महाप्रभु आने बहुत रेयर है और उनके जन्म स्थान में ऐसे 9-9 फीट वाले पंच तत्व आज से पहले किसी ने देखा भी नहीं, इतने विशाल, सब न्यूज फैल गया, कहां कहां से कौन कौन आया। मैं पूछा कैसा था ये, अरे क्या ये तो ये थे, वो थे, वो थे, वो थे, वो थे, ये थे, ये लोग आए, ये लोग महाराज लोग आए थे, फटाफट सब नाम ले रहे थे। That is how you judge the significance of an event. बोले ऐसा ऐसा था, क्योंकि मालूम है ये very rare event, बार बार नहीं आने वाला। तो इसीलिए ये महान संत तत्र उपजगमुह सब आ गए वहां, और हमें एक बताने के लिए कि कौन कौन लोग यहां आए, सुखदेव गोस्वामी दो श्लोक खास इन लोगों के नाम दिए। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि आए, अत्रि, च्यवन, शरदवान, अरिष्टनेमी, भृगु, वशिष्ठ, अरे वशिष्ठ, पराशर मुनि, वशिष्ठ मुनि तो रामचंद्र के समय में थे, ये भी आए, क्या बोलते हैं, विश्वामित्र। आप बोलिए त्रेता युग वाले अभी तक जिंदे आए क्या वो लोग? अरे हां, देव योनि में, स्वर्ग लोक में उनका, हमारा एक साल जो उनके लिए नहीं, हमारा 6 महीना उनका एक दिन, हजारों साल वो रहते हैं, पर उससे भी ऊपर है जनलोक, महरलोक, तपोलोक, और वहां की अवधि तो बहुत दीर्घ है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, हमारा चार ये युग है, वो 1,000 बार जाते तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो उनके लिए आना, उनको मालूम है कौन कौन से कहां कहां क्या इवेंट हो रहा है, पहले से सूचना मिल जाती है उनको, उनका पास हाईफाई कम्युनिकेशन सिस्टम है, वाइब्रेशन से पता लग जाता है उनको। तो च्यवन, शरदवान, अरिष्टनेमी, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इक्ष्मबाहु, इद्मबाहु, मेधातिथि देवल आष्टिशेन, आप बोलेंगे ये सब क्या नाम है, अगर हम करेंगे कुछ ऐसे महाराजों का नाम लेंगे, हाँ ये है हमें नहीं मालूम ये, इसीलिए थोड़ा ठीक है आए तो हम क्या करें, ऐसी भावना है। भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कण्व, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा तो महापुरुष नारद, नारद जी भी वहां आए, व्यास देव वहां आए। उसके अंग्रेजी श्लोक में कहते हैं, अन्येच देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च, सारे सब अपने शिष्यों के साथ आए, सारे देवर्षिगण, सारे ब्रह्मर्षिगण, सारे राजर्षिगण सब वहां एकत्रित हो गए भागवत कथा श्रवण करने के लिए। भागवत कथा से ज्यादा इनका भी दर्शन था, महाराज परीक्षित का दर्शन करना चाहते थे क्योंकि ये व्यक्ति भगवत धाम जा रहा है। भगवत धाम जाना इतना आसान चीज नहीं है, अगर एक व्यक्ति भगवत धाम जा रहा है सारे देवतागण दर्शन लेने आते उस व्यक्ति का। हम लोग आसान से बोलते हैं भगवत धाम जाएंगे तुम, किसी तरह से बड़ी मुश्किल से सोला माला करते हैं और हम कहते हैं कि भगवत धाम, वाह, अरे नारद मुनि पराशर मुनि आप देखने आए इनको कि ये जाने वाले 100% गारंटी है, उनको मालूम है क्वालिटी जीवन देखते तो समझ में आ जाता है क्या होने वाला है इसकी। फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ वन्स लाइफ यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द डेस्टिनेशन। ऑफकोर्स भगवान की कृपा भी है, कैसे कैसे व्यक्ति को तुरंत ले जाएंगे, क्या क्या कौन रोक सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कुत्ते को बोला चलो चलो आ जाओ मेरे, आ गया, महाप्रभु की कृपा है। ऑफकोर्स हम अगर भगवत धाम की हम जाने की इच्छा कर रहे हैं केवल महाप्रभु की कृपा, नहीं तो हमारे योग्य नहीं। पर इन्हें मालूम था कि भगवान महाराज परीक्षित जा रहे हैं। अब देखिए सारे ऋषिगण आए हैं परीक्षित महाराज का दर्शन करने के लिए, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारे गुण, गंगा स्नान करने के लिए नहीं आए वो तो कभी भी आ सकते हैं, गंगा तो हमेशा बहती रहती है उधर। परीक्षित महाराज का दर्शन करने, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने, सुखदेव गोस्वामी जैसे महाव्यक्ति के मुखारविंद से भागवत सुनने आए हो। पर परीक्षित महाराज की भावना क्या है, वो नहीं बोले आप लोग मेरा दर्शन करने आए, अरे बोल आइए बैठिए कर लीजिए मेरा दर्शन, ऐसा नहीं। परीक्षित महाराज की भावना क्या है, जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शिरसा प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से स्वागत किया, बड़े कृतज्ञता पूर्वक अपने को सौभाग्यशाली मानकर, अहो भाग्य है मेरा कि अब इस शरीर छोड़ते के उपलक्ष में, इस ऐसे समय में जब मुझे कृष्ण की कृपा की जरूरी है, कृष्ण का स्मरण होना बहुत जरूरी है, आप जैसे तीर्थों को शुद्ध पवित्र करने वाले महात्मा गण बड़े कृपा पूर्वक मुझे प्रोत्साहन देने आए हैं, मैं आपका आभारी हूं। ये भावना थी परीक्षित महाराज की। प्रभुपाद न केवल भक्ति बल्कि जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति जो इस भक्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी है, जैसा मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं, पानी पीने के लिए एक बोतल चाहिए, पानी रखने के लिए एक बोतल चाहिए, हम बिसलेरी बोतल का 13 रुपया या 12 रुपया या 10 रुपया देके खरीदते हैं, क्या बोतल को खरीदते हैं क्या, वो बोतल 50 पैसे का भी नहीं है, पीने के बाद वो बोतल को फेंक देते हैं, वो भिखारी आके उठा के ले जाता है, पर पानी है इसीलिए उसको हम 13 रुपया देते। इसी तरह से कृष्ण भक्ति जो है वो मुख्य चीज है, पर कृष्ण भक्ति को रखने के लिए और बांटने के लिए एक पात्र चाहिए और वो पात्र है वैदिक संस्कृति। जहां वैदिक संस्कृति नहीं होगी वहां कृष्ण भक्ति में रहना बड़ा मुश्किल है, लोगों को बहुत तकलीफ होता है। जब मैंने देखा है जो पाश्चात्य देश में रहते हैं, जहां वातावरण न भक्त है, न मंदिर है, न भक्तों का संघ है, ऐसे संघ में जो लोग रहते हैं उनको भक्ति करना बहुत मुश्किल, धीरे धीरे ढीला पड़ ही जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि अनुकूल वातावरण नहीं है। पानी कितने देर हाथ में रखोगे, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। बांटने का तो दूर की बात, रख भी नहीं सकते पीने के लिए, कल पियेंगे ऐसा थोड़ी रहेगा। ऐसा पकड़ के धोती में रखोगे? उसके लिए अनुकूल पात्र चाहिए। तो एक अनुकूल वैदिक संस्कृति का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सारे वैष्णव आचार इत्यादि हम लोग पालन करते हैं। वैष्णव आचार्य मतलब एक ऐसा एक संस्कृति बना है जिसमें जो भी प्रवेश करे न केवल कृष्ण भक्ति के रसामृत का पान करेगा पर उसको बनाए रख के बांटने में भी मदद होगा। इसीलिए वातावरण, अनुकूल वातावरण बनाना बहुत जरूरी है। एक मंदिर होना जरूरी है, भक्तों का संग होना जरूरी है, विग्रह की सेवा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अनुकूल वातावरण है जहां भक्ति भावना या भगवान का स्मरण होने में बहुत अनुकूल है, आसान हो जाता है। अगर ये नहीं होता, आप सोचिए, प्रभुपाद जी की कृपा से ये उनके चरण कमलों का आश्रय है, नहीं तो हमेशा सोचना पड़ता था अभी उनका आरती होने वाला, चलो जाली करो इधर से। पर मालूम है यहां सब लोग आएंगे, प्रेम से भक्ति करेंगे, प्रसाद यहां बनेगा, प्रसाद सेवन करेंगे, आज नहीं 12 बजे। अनुकूल वातावरण है ऐसा। और हमें मालूम है, एक परिवार में ऐसा लगता है हम परिवार में आ गए, क्योंकि यहां सब क्या करते हैं हमको मालूम है, किस प्रकार से आदान प्रदान होता है मालूम है। तो प्रभुपाद जी जब भी एक समय मिलता है अनुकूल, एक तात्पर्य में थोड़ा बहुत संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी न केवल पाश्चात्य देश में भक्ति दिए, भक्ति का ज्ञान दिए, बल्कि एक अनुकूल संस्कृति बनाए। धोती कुर्ता नाम नहीं जानते थे वो पहनने लगे, वो तिलक नाम का चीज नहीं मालूम, तिलक लगाने लगे, भगवान की श्री विग्रह की आराधना, ये सब क्या मालूम उन लोगों को, पर वो बनाया ऐसा अनुकूल वातावरण। तो प्रभुपाद जी यहां देखिए, राजा शिरसा वंदे का मतलब है सबको शिरसा प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से स्वागत किया। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, गुरुजनों को आदर करने के लिए सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है। किसी को हम आदर करना चाहते हैं, गुरुजनों को, तो भूमि तक सर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे अतिथि अपने को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहां तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा किया कर दिया जाता है। और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे, उन्होंने इस समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। एक बार मेरी एक कजिन सिस्टर जो अमेरिका में रहती है, एक हफ्ते पहले आई थी, वो बंबई आई थी, एयरपोर्ट में आके वहां से जा रही थी, तो एक घंटे के लिए हमारा वहां मिलना हुआ। तो उनके पिताजी बहुत सारे रीति रिवाज, पूजा पाठ सब करते थे, अभी वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अभी वो कुछ नहीं करते, ना जप करते ना कुछ नहीं करते। और ये उतनी मतलब भक्ति वक्ति उतना उसको कुछ मालूम नहीं है, वो मेरी उम्र की है। वो माला दे के उनके पिताजी को कह रही थी, आप जप करो, वो बोलते नहीं, दिल नहीं करता, तो कुछ नहीं होता। तो वो मुझे कह रही थी, मुझे जब देखी कि मैं अभी साधु बन गया हूं और जप माला लेके घूम रहा हूं हमेशा, तो बोली कि देखो मैं समझती हूं, मैं सम्मान देती हूं, तुम करते हो, पर बोली कि ये सब रीति रिवाज कुछ कुछ फायदा नहीं इसमें। मैंने देखा है जो इतना रीति रिवाज का पालन करते थे आज उब गए, उनको माला लेने की इच्छा नहीं, तो ये रीति रिवाज छोड़ो। क्या है इसका उद्देश्य? तो मैंने उनको कहा कि देखो, भक्ति में आने के पहले और तुरंत आने के पश्चात रीति रिवाज का पालन करना जरूरी है, क्योंकि भावना उत्पन्न होती है। रीति रिवाजों को पालन करने से वो अनुकूल भावना उत्पन्न होती है। तो शुरुआत में रीति रिवाज का पालन करते हैं ताकि अनुकूल भावना उत्पन्न हो, पर जब हम प्रगति हो जाते हैं और भावना आ जाती है तो रीति रिवाज स्वाभाविक है, स्वाभाविक है वो। जैसे कोई जब भक्तों को मिलते हैं तो हमको कहा जाता है कि प्रणाम करो, झुको, वांछा कल्पतरु भेष कृपा सिंधु भी बचो, क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से देखने के कारण लोगों को ठीक तरह से सम्मान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें कहा जाता है भगवान के मंदिर में आए तो झुको, भगवान के सामने झुको झुको झुको, अरे झुको की सुनावा झुकना है, झुको 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 तो, क्योंकि झुकते झुकते शायद हमारा अहंकार जो ताड़ के पेड़ जैसा खड़ा है एक दिन थोड़ा झुकेगा। पर जो स्वाभाविक रूप से अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांति मार्जवम आचार्य उपासनम शौचम, जो एक स्वाभाविक रूप से नम्र व्यक्ति है, स्वाभाविक रूप से किसको भी देखे वो झुकेगा। अभी झुकना या नहीं झुकना वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, एक जिसके अंदर नम्रता है वो स्वाभाविक रूप से झुकेगा, उसके लिए वो बहुत बड़ी एक एटिकेट पालन करना ऐसा नहीं, नेचुरल है वो उसके लिए। पर जिसके अंदर वो भावना नहीं है उसको कहा जाके झुको, तो जिसकी भावना नहीं है उसको झुकना चाहिए ताकि भावना आए, जिसके अंदर भावना है वो स्वाभाविक रूप से झुकेगा, और इस तरह से ये संस्कृति है। तो सामान्यतया जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने के लिए सबों की शुभ कामनाएं प्राप्त की। देखिए ये भी एक महान व्यक्ति का लक्षण है। कोई भी महान व्यक्ति को देखिए, जब ध्रुव महाराज उनको लेने भगवत धाम से विमान आया तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, सबसे पहले अपना जप खत्म किया। ऐसा नहीं कि बोले अरे ठीक है अभी जप करना बंद, अभी तो भगवत धाम ही जा रहे हैं, बोले ठहरो मेरा पहले माला होना है, पूरा पहले काम करूंगा बाद में चढ़ूंगा मैं, मेरा पहले पहले अपना जप किया एक साधना भक्त के जैसे। उसके बाद जिस आश्रम में रहते थे उस आश्रम में जितने सारे अपने गुरु बंधु या मुनिगण थे सबके पैर पड़े और सबसे आशीर्वाद मांगी कि मैंने अगर कुछ गलती काम किया हो, आपके प्रति मैंने कुछ अगर व्यवहार किया हो, मैं माफी चाहता हूं। अरे माफी क्यों कर रहा था? नहीं, अगर कुछ अपराध किए होते तो आता ही नहीं है विमान सबसे पहले। पर भक्त का उसी लिए तो भगवत धाम जाने के लिए तैयार है, उनके अंदर ये भावना है, वो झुक के प्रणाम करते कहते अगर मेरे से कुछ अपराध हुआ तो कृपया माफ कर दीजिए। प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में, ये उनकी महानता है ऐसे महान भक्तों की, जो भगवत धाम जाने के लिए हकदार है, उनकी भावना ये है। प्रभुपाद जी कहते थे, अपने गुरु भाइयों को कहते थे, मैंने फूल्स एंड रैस्कल्स इसका बहुत उपयोग किया, क्योंकि परीक्षित महाराज भी, अरे राजा है तो तलवार लेके घूमना ही पड़ेगा, राजा है तो तलवार लेके, अरे कली जैसा आदमी है तो तलवार नहीं लेके, प्रभु थोड़ा ऐसा मत मारो ना गाय को बैल को, ऐसा थोड़ी होगा, अरे राजा है तो बोलना ही पड़ेगा, मूर्खों को इसी तरह से सिखाना चाहिए। तो जो प्रभुपाद जी सम्राट, विश्व के सम्राट जैसे पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे थे कली को लात मार के निकालने के लिए, तो जहां भी कली का थोड़ा भी प्रतिनिधि देखा तो बोले मूर्ख रास्कल फूल्स अवदान तिमाम मूढ़ा, क्या करे भगवान ने बोला है, जो नहीं करता वो मूढ़ है, कहना ही पड़ेगा, फूल्स रास्कल्स, और रास्कल भी प्रभुपाद ने बोला, मैं नहीं बोला भगवान ने बोला, नमाम प्रपद्यंते मूढ़ा नराधमा आसुरम भाव आश्रित डिमोनियक डिमंस, तो मैंने थोड़ी बोला भगवान ने बोला, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं और सही भावनात्मक रूप से दोहरा रहा हूं, क्योंकि नहीं आप मूर्ख हो, ऐसा नहीं, मूर्ख हो तो मूर्ख हो, मूर्ख है तू, बोलना पड़ता है। तो उस भावना से प्रभुपाद सेवक के रूप में, अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है और बोला फोड़ी हो गया डॉक्टर, तो भूख दूंगा बच्चा ऐसा थोड़ी चाकू लेके काटना पड़ता है, बहुत दर्द होता है, बोले दर्द होगा, हो गई फोड़ी जो है। तो उनके अहंकार की फोड़ी को निकालने के लिए फुल झंडा स्कल्स बोलना पड़ा सेवा के रूप में। पर फिर भी भक्त सोचता है कि नहीं, मैंने ऐसा गलत गलत शायद अहंकार से क्रोध के रूप में मैंने बोल दिया हो, मेरा इतना बड़ा संस्था है, इतने सारे शिष्य हैं, थोड़ा अहंकार आ गया हो, शायद मैं बोल दिया हूं, अगर मैं ऐसा कुछ किया हूं, कुछ मैं बोला हूं आप लोगों के प्रति, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उनके गुरु बंधु रोने लगे, आप जैसे महान व्यक्ति पूरे विश्व का उद्धार कर रहे हो, पतित लोगों का पावन कर रहे हो, आपसे क्या दोष होगा, इम्पॉसिबल। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति के बिना एक व्यक्ति के हृदय में हम लोग नहीं बदल कर सकते, अपरूपा जी ने पूरे विश्व में बदल किया। यानी कृष्ण शक्ति के स्वरूप थे, मतलब शक्तावेश अवतार है, नहीं तो 70 साल की उम्र में कौन कर सकता है। पर भावना क्या है, अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया है माफ कीजिए, जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया और उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। ये भी एक बहुत सुंदर, देखिए सटल एटिकेट्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन का ये सूक्ष्म कल्चर, वैदिक लाइफस्टाइल, कल्चर, एटिकेट। सारे ऋषि मुनियों के पहले ही संकल्प कर लिया राजा ने कि मैं मृत्यु तक एक हफ्ते तक न खाऊंगा न पीऊंगा न सोऊंगा, गंगा के तट पर बैठूंगा और हरि कथा सुनूंगा, जो भी सर्वश्रेष्ठ चीज है वही मैं करूंगा। पर जब सारे ऋषि मुनिगण आए तो उन्होंने अपना संकल्प सुनाया ऋषि मुनियों को और कहा कि मैं ऐसा संकल्प लिया हूं, क्या सही है, आपका आशीर्वाद है, आपका आपकी सम्मति है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय सुनाया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी आचार्य द्वारा पुष्ट होना चाहिए, इससे बात पक्की होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे, वे वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे। पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। जब खास करके हमें शक्ति मिलती है, राजा है, अरे राजा प्रत्यक्ष देवता, वो जो भी बोला लोग पालन करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम कुछ ऐसे निर्णय ले लें। अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त हैं, जिनके लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया अपना, पर ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं मैं क्या करूं, अभी अतिथियों का सत्कार करना है, वो अभी तक आए नहीं है दुर्वास मुनि, और मैं राज्य की भलाई के लिए मैं ये उपवास कर रहा हूं, उपवास तोड़ूंगा तो तकलीफ, नहीं तोड़ा तो भी तकलीफ, कृपया मुझे बताइए। जब परीक्षित महाराज को, अम्बरीश महाराज को मालूम नहीं था, ये उनकी नम्रता थी। व्यक्ति भागवत साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने दिखाया जीवन का सबसे श्रेष्ठ निर्णय। संन्यास लेने के बाद सची माता के कहने पर वो जगन्नाथपुरी आ गए, पर उनकी तीव्र हृदय की इच्छा थी कि मैं वृंदावन जाऊं। अपने भक्तों से पूछते थे आप अनुमति दीजिए कि मैं वृंदावन जाऊं, नहीं 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 अभी जगन्नाथ यात्रा होने, ठीक अभी डोल यात्रा होने, अभी ये होने दो, अभी गोवर्धन पूजा होने दो। एक साल हो गया, पर महाप्रभु जब तक सारे भक्तियों भक्तों का और परमानंद पुरी इत्यादि जो वरिष्ठ सार्वभौम भट्टाचार्य, उम्र से बड़े थे सब लोग, जब तक उनकी अनुमति नहीं मिली तब तक वो समझते थे कि ये यशस्वी नहीं है। भौतिक रूप से यशस्वी हो पर भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा, भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा। और अगर अनुमति के साथ हम कहीं जा रहे हैं तो भले भौतिक रूप से यशस्वी ना हो पर भगवान को प्रसन्न करेगा, और वो क्रिया उसी क्षण जब वो आशीर्वाद मिल गया वो क्रिया ऑलरेडी यशस्वी है। भले परीक्षित महाराज चार दिन के बाद उपवास तोड़ भी देते पर यशस्वी है, क्योंकि सब ऋषि मुनियों ने उसको सम्मति दी थी। उनका सम्मति मिलना मतलब भगवान की कृपा है उस कार्य पर और उस निर्णय पर। तो ये हम देखते हैं, दीज आर द वेरी सटल कल्चर, वैष्णव कल्चर, संस्कृति जो प्रभुपाद जी ने न केवल शुद्ध भक्ति पर भक्ति का स्वरूप कैसा होता है एक समाज में, बाहरी रूप से किस प्रकार से ये आचार विचार रहन सहन कैसा होता है, बहुत सुंदर से समझाया। तो इस तरह से महाराज परीक्षित ने ऐसा मैं व्रत लिया हूं कि मैं गंगा के तट पर बैठूंगा और पूर्ण रूप से मृत्यु मरणासन्न, जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक ऐसा निर्णय लिया हूं। आप लोगों की कृपा है, आप लोगों की अनुमति, आप लोगों का आशीर्वाद है रहे। और फिर यह श्लोक बहुत सुंदर है, इसके बाद हम लोग भागवत में जाएंगे, दशम स्कंध में जाएंगे। यह श्लोक बहुत सुंदर, सुनिए। अब अनुमति लेने के बाद, आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, अब महाराज परीक्षित मुनिगणों को कहते हैं, अहो वयम धन्यतमान नृपाणाम महत्तमानाम अनुग्रहणीय शीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचा दूराद विसृष्टम बतगर्ह्य कर्म। नम्रता पूर्वक क्या कह रहे हैं भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुरुषों के अनुग्रह प्राप्त करने के आदि हैं। सामान्यतया आप लोग राजाओं के किसी दूर स्थान पे फेंके जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। महात्मा लोग, खास करके जो विरक्त सन्यासी लोग हैं, वो राजा के कुल जो है, राजा मतलब धन स्त्री पैसा क्या बोलते हैं यश, इन चीजों के पीछे लगे रहते हैं। तो इसीलिए एक वैरागी व्यक्ति ऐसे लोगों का जिस प्रकार से मल विसर्जन करने के बाद दूर जाके विसर्जन करते, घर में नहीं करते, दुर्भाग्यवश कलयुग में क्या करेंगे, अभी बाहर जाने का जगह ही नहीं है तो इसीलिए घर के अंदर ही हो गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यद्यपि राजा ने पहले धार्मिक नियमों के अनुसार मल मूत्र धोवन आदि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए, भले ही घर से लगे स्नानागार मूत्रालय आदि आधुनिक सभ्यता में सुविधाएं हो, कन्वीनियंस बगल में ही है, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। एक्चुअली गांव में टॉयलेट होता ही नहीं, सब बाहर ही होता नैसर्गिक। फिर जैसे जैसे थोड़ा ऐसा टाउनशिप आ गया, पहले पहले क्या बड़े घर होते थे और घर में बड़ा बगीचा होता था, बगीचा के कोने में पिछवाड़े में, हमारे भाषा में ऐसे पिछवाड़े में जाना मतलब कहां जाना है, थोड़ा मैं पीछे जाके आता हूं, हाँ समझ लेंगे, आगे जाना मतलब कहीं बाहर जा रहे घूमने के लिए, पीछे जाना मतलब इमरजेंसी। तो पिछवाड़े में होता था, घर से बाहर थोड़ा दूर में होता था, फिर धीरे धीरे घर से सटा पर पीछे होता था, अभी तो किचन के बगल में ही आ गया, क्या करेंगे, 2-in-1, 3-in-1, all-in-1 क्या करेंगे, कलयुग की लक्षण। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है कोई नियम नियम नहीं, हरे कृष्ण जपते रहो बस, क्या करेंगे, क्या क्या शुद्ध रखेंगे, अभी परिस्थिति बहुत बुरी है। तो एक जिस प्रकार मलमूत्र विसर्जन घर से दूर जगह में जाके किया जाता है ताकि वो अशुद्ध स्थिति ना हो जाए घर के अंदर और स्नान करके बाद में आते अंदर। इस तरह से एक विरक्त सन्यासी को चाहिए कि राजनीति से जुड़े हुए जो चीजें हैं, धन, स्त्री और मान सम्मान इत्यादि, स्वाभाविक है राजा के लिए, पाउंड शिलिंग एंड पेंस, ऐसे व्यक्तियों का संग इतना ही दूर रहना चाहिए। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया सार्वभौम भट्टाचार्य ने कि महाराज प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते हैं, बोले विष्णु विष्णु विष्णु, और एक बार कहोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, वो मामूली भक्त नहीं है, अरे मामूली व्यक्ति नहीं है, मामूली राजा नहीं है, मैं समझता हूं आप राजा से नहीं मिलते, पर ये भक्त है, भक्त है। महाप्रभु ने कहा नहीं, निष्किंचन से भगवत भजनोन्मुख से पारम परम जिगमिशोर भवसागर से संदर्शनम विषयनाम अथयोषिताम च हा हंत हंत विषभक्षण तोप्य साधु। निष्किंचन, जो भगवान की निष्किंचन भक्ति करना चाहता है, भजन उन्मुख से भगवान की भजन में अग्रसर होना चाहता है, पारम परम जिगमिशोर इसी जीवन में भगवत धाम जाना चाहता है, भवसागर को पार करना चाहता है, उसके लिए संदर्शनम, संग तो छोड़ो दर्शन करना भी, संदर्शनम विषय नाम, बड़ा विषय आदमी, विषय भोग में लगा हुआ, जैसे अजामिल ने देखा विषय में लगा हुआ, और अथ योषितांच विरुद्ध लिंग जो क्या है, मतलब ऑपोजिट सेक्स, इसका दर्शन करना अथयोष, हा हंत हंत विषय भक्त, इसका मतलब ट्राइंग टू एसोसिएट, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं विच ए एंजॉइंग स्पिरिट, भोग करने की इच्छा से जब हम ऐसा संग करते हैं और कहते हैं कि इसके पास इतना सुंदर है मेरे पास नहीं है, और ईर्ष्या आ जाती है, खत्म हो गया, हा हंत हंत विषभक्षण, विष खाए तो कम से कम शरीर का नाश होगा, पर ऐसे संग से भक्ति का नाश हो जाएगा, पता नहीं फिर से कब मिलेगी, ब्रह्मांड भ्रमित को भाग्यवान जी, वो भाग्य हम खो बैठेंगे इन चीजों से फिर से अगर आसक्त हो गए। इसीलिए आदर्श उदाहरण देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु विरक्त सन्यासी होने के कारण कहे कि मैं राजा महाराज से नहीं मिलूंगा। महाराज परीक्षित अपने आप को ऐसा व्यक्ति समझते थे, जबकि वो सचमुच में राजर्षि थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान को सबसे प्रिय थे, नित्य पार्षदों में से एक थे वो, और भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पर अपने आप को समझ रहे थे कि मैं दूर से छोड़े जाना वाला जो शौच चीज है, ऐसा व्यक्ति हूं मैं, कोई भी राजा का दर्शन नहीं करता, पर आप जैसे महात्मा निसंकोच मेरे सामने आप आए हैं, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए, मुझे मदद करने के लिए, आप बहुत गर्व अनुभव कर रहे थे, पर गर्व किस चीज के लिए, अगले श्लोक में बताते हैं, बोलते हैं आध्यात्मिक तथा परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों की महानता के कारण था। मैं परीक्षित हूं, विश्व का सम्राट हूं, इसलिए आप नहीं आए, मुझे मालूम है आप आए हैं क्योंकि आप पांडवों को प्रिय हैं, पांडवों से प्रेम है आपका, और क्योंकि मैं किसी तरह से पांडवों के संबंध में हूं इसीलिए आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीवास ठाकुर से, श्रीवास तुम मुझे इतने प्रिय हो कि तुमसे जो कुछ भी जुड़ जाता है, कोई भी जुड़ जाता है, तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे घर का नौकर, तुम्हारा दर्जी, जो भी तुमसे किसी तरह से संपर्क आ जाता है वो मुझको प्रिय हो जाता है। इसी भावना से परीक्षित महाराज इतने नम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि मैं कौन सी महान, मैं कुछ भी नहीं हूं, पर क्योंकि मैं पांडवों का पोता हूं और आप पांडवों से प्रेम करते हैं, इसीलिए उस प्रेम के कारण मुझे प्रोत्साहन करने के लिए आप आए हुए हो, बहुत मैं कृतज्ञता हूं, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं, गर्व होना चाहिए। आप बोले क्या प्रभु जी, आप तो बोलते हैं कि काम करो तो लोग मद यानी गर्व। एक्चुअली गर्व होना चाहिए। गर्व किस लिए? आमा के ऊपर नहीं, हमारे वंशज को तो देखो। अरे कैसे वंशज हैं हमारे, परंपरा देखो कैसे है मां। ये हमारे दादाजी हैं और ये हमारे परदादाजी, 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 कैसे कैसे लोग हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। किसी तरह से हमारा सौभाग्य कि हम जैसे जुड़े हुए हैं बस। और इसीलिए भगवान कहते हैं तू तो नालायक है पर क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है ना, चल तेरे को भी ले चलता हूं। कभी कभी जगन्नाथपुरी में क्या हुआ, हमारे राधानाथ स्वामी महाराज जी संन्यास का धंडा लेके जब जाते हैं तो महाराज के बिल फाड़ के सब लोग घुस जाते हैं अंदर। चार पांच लोग क्या करते हैं, महाराज हटो हटो, वो भी चले जाते। और बेचारे महाराज जी आ रहे थे उनके पीछे चार लोग आंटी की हटो हटो हटो, चलो वो भी घुस गए अंदर। तो इस तरह से हमको घुसने नहीं दे रहे थे पर कोई महाराज जी आए तो ये हटो हटो, अच्छा अच्छा अच्छा, उनके चार शिष्य भी अंदर चले गए। इस तरह से हम भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो कोई जा नहीं सकते। भगवान पूछेंगे कौन है रे तू, कौन है तेरा, पहचान क्या है? नहीं नहीं वो मेरे परम गुरु पर प्रभुपाद है। अच्छा चला जा अंदर। तो ये गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज ऐसे मामूली व्यक्ति नहीं। भगवान के भक्तों को ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भीर एद मान मदह पुमान, उन चीजों से हमारा गर्व नहीं है। इसे क्या है ये सब, असली चीज ये है। हमको गर्व होना है तो हमारे ऐसे संप्रदाय के प्रति जिस जो कृपा पूर्वक हमें स्वीकार किए हैं। इनमें पहला तो वास्तविक है, पहला गर्व वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ। अगर जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री के ऊपर हमारा गर्व है तो ये झूठा है और ये व्यर्थ है। एधमान मदकुमान, और ये बहुत बड़ा बाधा है। भूरिजन प्रभु कहते हैं भगवत धाम का रास्ता इतना छोटा है कि इतना बड़ा जो अहंकार है घुसेगा नहीं, अटक जाएंगे हम लोग। छोटे सुई के अंदर हाथी को घुसा सकते? भगवत धाम का रास्ता नम्र लोगों के लिए, बहुत जो नम्र होता है। हमारा हाथी जैसा अहंकार को लेकर, दरवाजा खोलो मैं आया हूं, समझा 16 माला किया मैंने 8 साल के लिए, बोला जाके करते रहे अभी तक बस, और बहुत करना है तेरे को, 16 अब्ज वर्षों तक करते रहे बाद में देखेंगे। तो अहंकार व्यक्ति नहीं घुस सकता। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में, यह सुंदर श्लोक है, निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो। भगवान परीक्षित महाराज के जीवन में किस प्रकार अवतरित हुए, जन्माष्टमी मतलब भगवान का अवतरण, भगवान का अवतरण द्विज शाप के रूप में परीक्षित महाराज के रूप में आए, परीक्षित महाराज के जन्म में जीवन में आए। तो कहते हैं भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों के आगमन के परमेश्वर के अनुग्रह के संकेत मानकर उनका स्वागत किया। गंगा जी हैं सारे महान, आप जैसे तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले, पुण्य शुद्ध करने वाले महाजन हैं और कृष्ण कथा सुनाने वाले हैं आप लोग, तो फिर और क्या भय, मुझे भय क्यों। और अंत में ये दो श्लोक कहते हैं, कहते हैं हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्णतया शरणागत के रूप में स्वीकार करो और भगवान की प्रतिनिधि स्वयं रूपा मां गंगा भी मुझे इसी रूप से स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले ही अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूं। अब चाहे तक्षक, नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा है कि अब आप भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करें। जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि भगवान आए हैं। जब बिल्ली के बच्चे को बिल्ली पकड़ने आती है अपने मुंह से तो बिल्ली को बहुत निर्भय होता है, आनंदित होता है, पर एक चूहे को जब पकड़ती है, मृत्यु सर्वहरचाहम, तो निर्भय थे वो, भयभीत नहीं थे वो। बोले नहीं, ब्राह्मण शाप के रूप में भगवान ने मुझे यहां से हटाकर अपने भगवत धाम ले जाने चाहते हैं, और उसका सूचक क्या है, आप महात्मा लोग आए हैं अपनी कृपा देने के लिए। और देखिए परीक्षित महाराज इतने नम्र हैं, उन्हें निश्चय था कि मैं भगवत धाम जाऊंगा, इतनी कृपा मिली है पांडवों की कृपा इन सबको, पर फिर भी कहते हैं कि बाय चांस अगर मैं नहीं गया, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं ये श्लोक बहुत सुंदर है, और ये प्रार्थना मैं तो कहूंगा हमें पक्का करना चाहिए, और ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि 100% हम लोग तो इसी जन्म में नहीं जाने वाले मोस्ट प्रोबेबली। अहित की कृपा हो जाए तो ठीक है, किसी ने अपने धोती पकड़ा दिया और भगवत धाम जाने वाले ने और हम उसको पकड़ के चले गए अंदर, तो दूसरी बात, नहीं तो हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करके पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तीन ही चीज मैं मांगता हूं, भगवान के प्रति अनुरक्ति हो, तीव्र आसक्ति हो, भक्तों का संग हो। भुक्ति मुक्ति स्पृह विहीन ये भक्त लभते तांक संग अनुरक्त, और कुछ नहीं मैं चाहता। हरिदास ठाकुर ने भी यही कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बार बार मैं क्या मांगता हूं, मैं क्या योग्यता है कि भगवत धाम जाने का मांगू, पर मैं चाहता हूं कि जन्म जन्म मुझे भक्तों का जो उच्चिष्ट है ये मुझे मिले। कीट जन्म हो यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म ना ही मोरा आश, और समस्त जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे। मैत्रिस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य, और जिसको ये प्राप्त है वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, फिर क्या कामना करते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहितु की त्वयि, आहितु की भक्ति आपकी, आपकी भक्ति आपके प्रति प्रेम, आपके भक्तों का संग, और जन साधारण के प्रति ईर्ष्या भाव ने मैत्री भाव, अजात शत्रु, क्योंकि जब तक लेश मात्र भी ईर्ष्या रहती है किसी के भी प्रति तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। ये मैत्री भाव हमेशा रहे सबके प्रति, ये प्रेम का लक्षण है। जिस प्रकार एक प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस प्रकार एक अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण की अच्छा बेटे होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के निकृष्ट पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे जीवन भी नहीं चाहिए अगर भगवान के भक्त के अलग हो तो। इस भावना से भागवत कथा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। पहला स्कंद हुआ, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, समुद्र मंथन, कितने सुंदर सुंदर लीलाएं, वामन देव की लीलाएं, नवा स्कंद के अंत में प्रभु रामचंद्र की लीला सुने और संक्षिप्त रूप में दो श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण लीला का रैप अप कर दिया। बोले बेचारे थके हुए हैं, प्यासे हैं, एक काम करता हूं, भगवान जन्म लिए उसके बाद इधर गए, उसके बाद मथुरा गए, उसके बाद द्वारका गए, सुंदर लीला की हरि बोल, दो श्लोकों में बोल दिए बस पूरी कृष्ण लीला को। अब परीक्षित महाराज देखिए उनकी, ये सब तैयारी था, नौ अध्याय, अरे नौ स्कंद, अब तो असली चीज है। कभी कभी मेन फीस्ट होता है, पहले राइस डाला डाल डाला, उसके बाद क्या मेन आइटम तो आ रहा है अभी, वो कहां है, उसकी तैयारी ये सब कर रहा हूं मैं। बोले मेन आइटम ला जिसका मुझे ऑलरेडी सुगंध आ रहा है। आपके घर आते ही मुझे समझ में लगा कि आप ये बनाए हो, अभी तक तो सिर्फ राइस दाल सब्जी दे रहे हो, अभी वो आइटम कब आएगा। इस तरह से परीक्षित महाराज बड़ी आतुरता से सूर्यवंश का सारा वर्णन सुने और जब चंद्रवंश का उन्होंने दो श्लोकों में खत्म ही कर दिया तो वो बहुत विचलित हो गए और अब दशम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, कृष्ण जन्म होने वाला है, क्या आतुरता है उनके अंदर। तो अब कहते हैं वो, हाँ श्री राजोवाच, अभी देखिए कम से कम पांच दिन तो हुआ ही होगा क्योंकि दशम स्कंद बहुत बड़ा है, 90 अध्याय है दशम स्कंद में, 90 में पहला 39 चैप्टर्स, 39 अध्याय जो हैं वो ब्रजलीला, 40वां अध्याय जो है वहां से निकलकर अक्रूर आते हैं और वो उनको ले आ रहे हैं, फिर वो 40वां हो गया, फिर 41 से 51 मतलब 11 अध्याय मथुरा लीला और 51-52 से लेकर 90 यानी 39 लीला, फिर 39 चैप्टर्स इस द्वारका लीला। तो सैंडविच चाहिए, ब्रज लीला 39, द्वारका लीला 39, बीच में 11 मथुरा लीला। ऑफ कोर्स कृष्ण लीला जो ऐसा है तो जहां भी चखो उतना ही आस्वाद है, उतना ही मीठा है। तो 90 अध्याय, कोई दूसरे भागवत में इतना अध्याय नहीं है, एक्चुअली 1/4 तो यही है। तो 5 दिन तो कम से कम हो गए होंगे 7 दिन में, न खाए हैं न पिए हैं न सोए हैं। ऐसा नहीं कि सुखदेव गोस्वामी रात को सोने जाते थे, परीक्षित महाराज क्योंकि बड़े तीव्रता से सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सुनना बड़ा आसान है बोलना बड़ा मुश्किल है, सुखदेव गोस्वामी ने खाया न सोया न पिया, बोलते जा रहे हैं और ये सारे ऋषिगण देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि वर्य ये भी ऐसे अमृत का पान कर रहे हैं, भूल गए हैं वो कि भूख नाम का भी कुछ चीज होता है, प्यास नाम का भी कुछ चीज होता है। कम से कम कथा सुनते वक्त हमको कुछ हद तक अनुभव होता है ऐसा, पर जैसा कथा खत्म हुआ कपानी किधर है, उस कुछ हद तक हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं कि एक्चुअली ये दिव्य स्तर पर हमको ला सकता है। तो यहां परीक्षित महाराज कहते हैं, सबसे पहले परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं क्योंकि ये भागवत का आदान प्रदान भक्ति जैसा है, भक्ति इज नॉट वन वे, ये वन वे होता नहीं है कभी, ये टू वे है। जब तक आदान प्रदान नहीं होगा तब तक भागवत पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को आत्माराम श्लोक के बारे में बोल रहे थे तो थोड़ा बहुत इच्छा था, सार्वभौम भट्टाचार्य जो उस समय मायावादी थे तो उन्होंने अलग से उनका नव जो मतलब बताए थे सर्वोच्च विद्वत सार्वभौम भट्टाचार्य विद्वान, उनके अलावा और 18 श्लोक बोला, 18 मतलब बताए। सार्वभौम भट्टाचार्य विस्मित हो गए। पर जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि वो आत्माराम वर्ष वो श्लोक मैंने सुना, आपने अलग अलग मतलब बताए, कृपया वो बताइए, वो क्या बोला मुझे याद नहीं अभी, पर क्योंकि तुम पूछ रहे हो ये लो सुनो, 61 श्लोक 61 और मतलब बताए, वो 18 को छुए भी ना। तो बोले तू भी एक पागल, मैं भी एक पागल, दो पागल मिलेंगे तो और क्या होगा। बातुला, तू भी एक पागल है कृष्ण प्रेम के पीछे, मैं भी पागल हूं, दो पागल में यही होगा। तो क्यों सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ सिर्फ 18 आया और इनके साथ 61 आया? ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु पहले से ये प्रोग्राम बना के आए थे, इसके पास सिर्फ 18 बोलूंगा क्योंकि 61 तो मेन प्रोग्राम वहां के लिए रखना है, ऐसा कुछ नहीं। देखे यहां इतना प्रेम, इतना मतलब आतुरता है, दे दिए। परीक्षित महाराज जैसे तीव्रता और जिस तरह से वो स्वीकार कर रहे थे उसको देखकर कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, ओ थैंक यू सो मच, क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि एक वक्ता को भी मालूम है कि वक्त श्रोता है, इसीलिए तो उसकी कृपा से मैं भगवान की सेवा में लगा हूं। अगर कोई होता नहीं तो कहां स्फूर्ति मिलेगी हमें बोलने की। तो बहुत कृतज्ञ है श्रोता के ऊपर कि कम से कम कोई बैठा है। अफकोर्स कोई महान भक्त है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, 3 दीवारों के बीच में वो बोलता रहेगा पर हम उस स्तर पर नहीं। अफकोर्स फिर भी भक्ति ऐसी है कि आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है, और तब इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते जा रहे उनको ऐसा ना लगे कि मैं थक गया हूं और अब बोलना ही बंद कर दे, तो इसीलिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, टू थैंक हिम फॉर प्रीवियस डिस्क्रिप्शंस। नौ स्कंद आप बोले हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोत्साहन देने के लिए आपकी आप बोलते जाओ, और उत्साह सुनने के लिए कृष्ण कथामृत अभी आ रही है, इस तरीके से उन्होंने कहते हैं वद विस्तरात, शॉर्टकट मत करो, अभी कथा को विस्तृत रूप से सुनाइए आप। वद विस्तरात, तो मैं उतना विस्तृत से नहीं बोलूंगा, पर कुछ चीजें यहां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सीखने योग्य है, हमें और हमें एक कुछ शिक्षा देती है। एक है उनकी आतुरता, कृष्ण कथा का आश्रय लेने का आतुरता, ईगरनेस। तत्रापि लौल्यम एकलम मूल्यम जन्म कोटि सिकृतभिर् न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति, अगर कृष्ण भक्ति रसभाविता मति, हमारी मति में कृष्ण को अवतरित करना है तो एक ही तरीका है, तत्रापि लौल्यम, श्रवण करने की लौल्य होनी चाहिए। और वो लौल्य उन्होंने, मतलब आतुरता कब आएगा, जब हम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छुक हो, उत्साह। भौतिक व्यक्ति को आप देखिए कितने उत्साह रहते हैं वो लोग, सही में खाना पीना भूल जाते वो लोग भी। एक बार जन्माष्टमी के लिए एक ये छापना था हमें सुविनीत, उसी दिन रिलीज करने के लिए कुछ पैम्पलेट बनाए थे स्टॉल में रखने के लिए, वो पैम्पलेट छापने के लिए मैं जन्माष्टमी के दिन सुबह, क्योंकि शाम को स्टॉल रखना पड़ता है, तो जन्माष्टमी के दिन सुबह प्रिंटर के पास गया, क्योंकि वो हां 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 करके कर ही नहीं रहा था, 1000 चीजें और लेके रखा था, तो मैं जाके बैठ गया उसके सर पर, बोला भी जब तक देगा नहीं हल ही लूंगा नहीं यहां से। न पानी पीने के लिए जाऊंगा, न पेशाब करने के लिए जाऊंगा, कुछ नहीं, बैठे रहूंगा इधर। उसे नहीं मालूम था कि मैं वैसे भी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जन्माष्टमी है, फास्टिंग वैसे भी है मेरा, खाना पीने का तो सवाल ही नहीं। उसको लगा बाप रे क्या निश्चय, एकदम अभी तो देना ही पड़ेगा इसको। तो मैं बैठा रहा, सुबह 8 बजे गया, बैठा रहा, शाम को 6 बजे तक मेरे सामने वो बैठा है, मैं उसके सामने बैठा हूं, कर रहा है। और शाम को 6 बजे क्या हुआ, 8 बजे देना था मुझे वो, 8 बजे तो मैं पीछे पड़ के सब कराया, 6 बजे उसके टेबल से पेपर फिसल के नीचे गिर गया। तो एक डब्बा रखा हुआ था, डब्बा के नीचे चला गया पेपर, तो पेपर निकालने के लिए उसने डब्बा उठाया, उसका खाने का डब्बा था, लंच का बॉक्स। तो जब उठाया तो बोला अरे ये तो भारी है, अरे 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 आज तो मैं खाना ही भूल गया। सुबह 8 बजे से 6:30 बजे तक शाम को मेरे सामने बैठा हुआ है, न उसने खाया न उसने सोया तो नहीं, मैं तो सोने नहीं देता उसको, न पिया न कहीं बाहर गया, कुछ भी नहीं। और जब ये उठाया डब्बे को, अरे खाना ही भूल गया आज, तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि तेरे चरण का धूल मेरे सर पे लगा दे तू। क्या मग्नता, तन्मय, इसको कहते हैं तन्मय। और उसके लिए कोई जन्माष्टमी मनोष्टमी नहीं था, इट इज अनदर ऑर्डिनरी डे। जब वो खाना ही भूल जाता है, पीना ही भूल जाता है, तो हम लोग तो एक महीने पहले से तैयारी करते, पिछले शाम को भी बहुत तैयारी करते, कल नहीं खा नहीं सकते पी नहीं सकते। पर ये भौतिक संसार में लोग इतने क्यों, मैं सोच रहा था इतना उत्साह उसको कैसे है, क्योंकि उसको इतना विश्वास है कि मैं और थोड़ा गधे के समान काम करूंगा तो गाजर मिल जाएगा मुझे, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं समृद्धि प्राप्त करूंगा और आनंद मिलेगा मुझे। उनको भौतिक सुख में जितना विश्वास है, उसका लेश मात्र भी अगर हमको कृष्ण के प्रति हो जाता तो हम शायद कुछ हद तक खाना पीना सब छोड़ के ध्यान से सुनते। उनको उतना विश्वास है कि हम शरीर हैं, जीवन का उद्देश्य है इंद्रतृप्ति, पर हमको दुर्भाग्यवश वो मालूम हो गया कि उसमें कुछ है ही नहीं। पर अभी तक इतना आसक्ति भी नहीं है, जिसमें आसक्ति है वो बंद हो गया, और जिसमें आसक्ति नहीं है उसमें जबरदस्ती बैठना पड़ता है। ये हमारी स्थिति है, न घर का न घाट का। मन आसक्त है इंद्रिय के विषय भोगों में, और वहां हमने बहुत समझ गया अभी कि उसमें कुछ है ही नहीं। और जिसमें बहुत सारा रस है, कृष्ण 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 और न, ये दो, इसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि इतना अमृत है कि काश मेरे पास हजारों कान होते, लाखों जिह्वा होते। ये हम श्लोक तो बोलते हैं, पर ठीक है, रूप गोस्वामी ठीक है, हमारे लिए नहीं हो सकता। तो हमारी परिस्थिति ऐसी है, पर अभी इसीलिए भगवान ये जानते हैं सुखदेव परीक्षित महाराज, इसीलिए कहते हैं निवृत्त तर्षे रूपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा कौतम श्लोक गुणानुवादान पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नान। बोले कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, ये भागवत कथा सबके लिए लाभदायक है। निवृत्त तर्षैर उपगीयमान, तर्षय तृष्णा, तृष्णा मतलब भौतिक इच्छाएं। सो निवृत्त तर्षैर, जो संसार के सारे भौतिक इच्छाओं से निवृत्त है, उसके लिए ये तो उपगीयमाना, उसके लिए अमृत के समान है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शुरुआत में कि उनके अंदर कोई भौतिक इच्छा थी नहीं, ब्रह्मज्ञानी थे वो, उनको एक पेड़ और एक नग्न स्त्री का स्वरूप कुछ फर्क नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये जो है, ये शुद्ध कृष्ण रसायन, पीते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, न खाया न सोया न पिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, क्योंकि रस आस्वादन हो रहा है, संख्या पूर्वक नाम गान नटिभि त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाशितौ गोपी भाव रस अमृत अब्धि लहरी कल्लोल मग्नौ। षड गोस्वामी जो थे सब कुछ त्याग दिए उन्होंने, कितने करोड़पति जैसे व्यक्ति थे, एक क्षण के अंदर सब कुछ त्याग दिए। कोई और हो जाएगा तो मर जाएगा, वृंदावन में किसी एक पेड़ के नीचे अलग रहना, अलग अलग पेड़ के नीचे हर एक दिन, पर गोपी भाव रस अमृत आप भी लहर, कोई और रहेगा तो मर जाएगा, नहीं कर सकता कृत्रिम रूप से, पर वो आस्वादन कर रहे थे गोपी भाव रस अमृत आप। तो निवृत्त तर्शे, निवृत्त तर्शना दो प्रकार के लोग हैं, ब्रह्मवादी और भक्त। ब्रह्मवादी की यहां सूचना नहीं हुई है, यहां यह सूचक नहीं है, क्यों? उपगीयमाना। मायावादी लोग हैं वो कृष्ण कथा में आनंद नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि कृष्ण का विश्वास ही नहीं है उनको, कृष्ण तो माया है उनके लिए, कृष्ण तो माया है उनके लिए। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रया सततम कीर्तयन्तु माम। सिर्फ वो महात्मा जो भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लिया है, श्रीमती राधा रानी का आश्रय लिया है, भक्ति का आश्रय लिया है, उपगीयमाना हमेशा गाता रहता है वो, नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमण नाम। तो निवृत्त तर्शों के लिए उपगीयमाना ये रस का आस्वादन है, और जो एकदम बद्ध जीव है, जिनको भगवान कौन है नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, आत्मा क्या है नहीं मालूम, उनके लिए क्या है ये? भवौषधि, कड़वा है पर फिर भी खाओ, डॉक्टर ने बोला है पियो, दिन में तीन बार लेना ही पड़ेगा, भवौषधि। उस औषधि में थोड़ा शुगर कोटिंग डाल के रासलीला, सुनना है रासलीला, आओ। पर क्योंकि कृष्ण से संबंधित रासलीला, उनको लगता है कि एक पुरुष और एक स्त्री आया, इसमें कुछ तो मजा है, इसीलिए जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग सीधा रासलीला में घुस जाते भागवत सप्ताह। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे व्यक्ति जो भागवत के हरेक श्लोक में रस का आस्वादन करते हैं, वो एक महीने तक पहले श्लोक पे ऊपर ही होते रहेंगे, क्योंकि उनके लिए पहला श्लोक का पहला अध्याय, पहला स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक हो या दशम स्कंद का 29वां से 33वां अध्याय रस पंचाध्याय हो, वो उतना ही रसमय है, उतना ही रसमय, क्योंकि कृष्ण है, कृष्ण है। ऑफ कोर्स भौतिक रूप से, एक रूप से, एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग 10th कैंटो इज द एसेंस, बट स्टिल फिर भी रसमय उतना ही। तो जो बद्ध जीवों के लिए दवाई के समान है, जो निवृत्त तृष्णा वालों के लिए अमृत के समान है, बद्ध जीवों के लिए दवाई के समान है, कड़वा है पर लेना पड़ेगा। और जो भक्त हैं, थोड़ा बहुत भक्ति में प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं पर मन बहुत सारे चीजों में अभी भी आसक्त है, मुझे ये भी चाहिए, थोड़ा बहुत वो भी चाहिए, मन को थोड़ा कृष्ण कथा भी चाहिए, थोड़ी दूसरी कथा भी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए श्रोत्र मनोभिरामा, मन और कान को सुंदर शुद्ध करने वाले ये कथा, नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। निष्ठा कब आएगी? भजन क्रिया, ये भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति स्या तथा निष्ठा। हम क्यों इसका पान करते हैं? हम पान करते हैं ताकि मनोभिरामा, मन को व्यस्त रखे, इंद्रियों को व्यस्त रखे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, और धीरे धीरे हमारे हृदय से ये अनर्थ निकल जाए। बद्ध जीवों के लिए दवाई, नौ सुखिया हम जैसे भक्तों के लिए मनोभिरामा, मन को व्यस्त करने का और मन को सारे अनर्थों से मुक्त करने का सुंदर तरीका, और निवृत्त तृष्णा वालों के लिए लगातार रसामृत, कृष्ण रसामृतम। और कौन ये नहीं सुनेगा विना पशुघ्नाथ? कौन ऐसा कृष्ण कथा को नहीं सुनेगा? बोले पशुघ्नाथ, जो पशु को मारता है हर रोज, जिसका हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया है। तदश्म सारम हृदयम बतेदम, जिसका हृदय कठोर है पत्थर के समान है, उसके ऊपर पानी डालो तो क्या घुसेगा पत्थर में? स्पॉन्ज जैसा होना चाहिए तब जाके पानी डाल तो कुछ तो घुसेगा, पत्थर जैसा है तो ऊपर से डाला तो साइड में से निकल जाएगा। तो पशुघ्नाथ, और दूसरा पशुघ्नाथ का मतलब है जो कर्मकांडी लोग हैं, जिसको क्यों सुनना है सप्ता, ऐसा सुना है कि भागवत सत्ता सुनने के बाद इतना धन संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, तो उनको कथा से कुछ लेना देना नहीं है, उनको फायदा देख रहे हैं उसके बाद, ऐसे लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान कुछ चीजों पे है, कुछ और चीजों पे है। इस तरह से पहला चीज के परीक्षित महाराज समझते हैं कि मैं इतना बद्ध जीव हूं, मुझे ये औषधि है, मेरे को औषधि आप देते रहिए देते रहिए। और दूसरा चीज है कि मनोभिराम, अगर आप बंद कर देंगे तो तुरंत मैं मन विचलित हो जाएगा मेरा, तो कहते जाइए आप, बाकी जो भी दिन है कृपया आप बोलते रहिए इस भावना से। और फिर अगले श्लोकों में वो कहते हैं कि क्यों मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे सारे जो वंश है उनके रक्षक हैं। पिता महामे समरे मरंजये देवव्रत आद्याति रते कृतिमिंगलय, जब पितामह हमारे मेरे पितामह पांच पांडव वो जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में खड़े हुए थे और सामने कौन थे, अमरंजय देवताओं को मारने वाले महायोद्धा देवव्रत भीष्म पितामह इत्यादि सामने खड़े हैं, दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कौरव सैन्य का सागर कोई सागर पार कर सकता है? मम माया दुरत्ययम, जिस प्रकार माया कठिन है ऐसे इस कौरवों को पार कर पाना, और ऐसा समुद्र नहीं जिसमें तिमिंगले मछली जैसे बड़े बड़े भीष्म द्रोण इत्यादि महान क्या मैं मार पाऊंगा, पर क्योंकि कृत्वातरण वत्सपदम, पर क्योंकि मेरे पितामहों ने आपकी शरण ली प्रभु, इसीलिए वो एक वत्सपद जैसे गो गा के बछड़े के खुर में जितना पानी आता है ऐसे पार कर गए, तो क्या मैं कृतज्ञता पूर्वक मुझे सुनना चाहिए कृष्ण के बारे में कि उन्हें हमारे पूरे वंशज की रक्षा की है। दिस इज ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता पूर्वक, एक तो उत्सुकता ईगरनेस और दूसरा कृतज्ञता। और फिर कहते हैं अरे पितामह तो दूर की बात, अगर आज मैं जीवित हूं और कुछ भक्ति कर पाया तो क्योंकि भगवान ने मुझे सबसे पहले बचाया मां के गर्भ में, तो मुझे कृतज्ञता पूर्वक उनके बारे में तो सुनना ही चाहिए इस समय मृत्यु के समय, क्योंकि उन्होंने कहते हैं द्रौण्यस्त्र विप्लुष्ट विदम मदंगम, द्रौणी के अस्त्र से ब्रह्मास्त्र से जला हुआ मेरा शरीर, संसार संतान बीजम कुरु पांडवाना, कुरु और पांडवों का एकमात्र संतान उसको मारने के लिए द्रोणी, जब द्रोण पुत्र ने अस्त्र छोड़ा था ब्रह्मास्त्र, जुगोप कुक्षिन आपने गर्भ में प्रवेश करके, ये कृष्ण का दूसरा अवतार है, एक तो भागवत के रूप में और दूसरा गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने दर्शन दिया। जुगोप कुक्षिन गत आत चक्रो, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए आप उस कुक्षि में प्रवेश किए, मातुश्च मे शरणं गताया, जब मेरी मां आपकी शरण आई तो निश्चित रूप से बड़े कृतज्ञता पूर्वक मुझे ये श्रवण करना चाहिए। और फिर कहते हैं न केवल आप अपने वंशज मेरे वंशज के संरक्षक हो, न केवल मेरे संरक्षक हो प्रभु, अखिल देह भाजाम, जितने सारे भौतिक संसार में जीवात्माओं ने शरीर को धारण किया है सबके आप ही एकमात्र संरक्षक हो, पुरुष काल रूप है अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, अंदर से बाहर से रूप में काल के रूप में आप तो सबको आश्रय देने वाले हो, जो भी अनुकूल भाव से आपकी शरण आए तो सबको शरण देने वाले, खास करके मुझे ऑलरेडी आपने शरण दिया है तो आपके बारे में मैं अभी नहीं सुनूं जब सबसे मेरी जरूरी है। और इस तरह से बहुत सुंदर से अलग अलग और फिर कहते हैं हां सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए इनके इस तरह से कहने पर और तब कहते हैं विस्तृत रूप से आप बताइए और तब कहते हैं या सुत गोस्वामी ने कहा हे भृगुपुत्र शौनक ऋषि। सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को इस सुखदेव और ऋषित महाराज के वार्तालाप के बारे में कहते हुए कहते हैं परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। कृष्ण चरितम कली कलमश घ्नम, कृष्ण चरितम कली कलमश घ्नम, कली के सारे कलमशों को नष्ट कर देता है, इसीलिए हमें सुनना चाहिए। जब तक हम नित्यम भागवत सेवा करते हैं तब तक कली का प्रवेश हमारे हृदय में नहीं होगा और सारे कलमश भी दूर हो जाएंगे। और तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अभी परीक्षित महाराज को हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेव के कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुमंदन, किसकी बुद्धि स्थिर है? स्थितधीर मुनि रुच्यते, कौन है जिसको निश्चित रूप से वासुदेव के कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है, जो भी इसके प्रति आकृष्ट है उसकी बुद्धि एकदम स्थिर है, स्थित है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है, क्योंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। अनवरत मतलब बाधा नहीं है इसीलिए उत्कृष्ट है। और वसुदेव, अरे इन्होंने एक और चीज कहा लास्ट में, वो कहने से पहले हाँ, और परीक्षित महाराज ये भी कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना विस्तृत रूप से प्रश्न पूछ रहा हूं और आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद थका हुआ हूं क्योंकि एक हफ्ता पहले मैं भूखा था, प्यासा था और थका हुआ था और विचलित हो गया और शमिक ऋषि के गले में मैंने मृत सर्प का हार पहना दिया। तो एक हफ्ते पहले मेरी ऐसी अवस्था थी, मैं अगर भूखा और प्यासा होता था तो ऐसा हो जाता था। तो शायद उसी लिए आप सोच रहे हैं बेचारा अभी भी है, पता नहीं अब क्या करेगा, इसीलिए वाइंड अप कर देता हूं बाबा कथा को। बोले नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, कोई चिंता मत कीजिए। और उसके कहते हैं नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोजम च्युतम हरिकथामृतम। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया था, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। तो इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं क्या मैं उसका असर पड़ रहा है मुझे? बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि उस समय मैं हरिकथा नहीं सुन रहा था, ऐसे ही घूम रहा था, इसीलिए मैं उसमें असर में पड़ गया। पर आज मैं हरिकथा सुन रहा हूं कंटिन्यूस लगातार, अब वही चीज मुझे बाधा नहीं दे रही। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर एक बात बताते हैं, द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग ड्यू टू स्पिरिचुअल हंगर एंड थर्स्ट। पूरी दुनिया भूखी है और प्यासी है और इसीलिए तड़प रही है। जैसे एक मछली को पानी से निकाल के बाहर फेंक दो, थटपटाती है, भले करोड़पति हो या रोड के ऊपर हो। बात यही है, जो भी अपने मूल स्वरूप से जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, वहां से डालकर बाहर, चाहे उसको एक सिंहासन पर बैठा हो या कहीं भी बैठा हो, वो मछली तड़पड़ा रही है। हर एक व्यक्ति आत्मा का भूखा और प्यासा है और तड़प रहा है। उसे लग रहा है कि और थोड़ा पैसा कमाऊंगा, और थोड़ा यश इत्यादि प्राप्त करूंगा, मान सम्मान इस सम्मान में, इस दुनिया में, तो मुझे वो भूख और प्यास मिट जाएगी। पर ऐसा नहीं हो रहा है, दुर्भाग्यवश। आत्मा का जो भूख और प्यास है उसको आध्यात्मिक खाना चाहिए, और कृष्ण कथा जो है उस आत्मा के भूख और प्यास को मिटाने वाली अमृत है। इसका सबूत क्या है? आप बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छा कथा बोल दिया प्रभु जी, प्रैक्टिकल प्रूफ, प्रूफ बताओ, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी साइंटिफिक साइंटिस्ट लोग हैं। कल हम लोग बैठे थे क्वेश्चन आंसर बूथ में, तुम चाह प्रश्न आने हम चाह उत्तर। तो एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि ये तो विश्वास के ऊपर है सब कुछ, क्योंकि इसमें प्रूफ नहीं है। तो यहां बता रहे हैं, व्हाट इज द प्रूफ, प्रभुपाद जी प्रूफ दे रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित ये जो सारे भक्त हैं पाश्चात्य देशों के, उस समय ज्यादा भारतीय भक्त नहीं थे, इंपोर्टेड लोगों के वो देख रहे थे, तो प्रभुपाद जी को बाहर जाके वहां भक्त बना के लाना पड़ा। इंपोर्टेड भक्त लाए तो बोले हाँ अभी भक्ति करेंगे, इंडियन भक्त नहीं, इंपोर्टेड भक्त चाहिए हमको। तो पूरे संसार में जितने सारे भक्त 1977 में ये लिख रहे हैं तात्पर्य, और 77 में तो 10 साल में अवधि में बहुत सारे सेंटर खुल गए थे, भक्त बन गए थे। ये लोग भूखे थे, प्यासे थे, भले अमेरिका से थे जहां पैसे की कमी नहीं है, जहां स्त्री संघ की कमी नहीं है, ये सब होते हुए भी भूखे प्यासे और लावारिस जैसे घूम रहे थे लोग। पर आज इन्होंने जब से ये कृष्ण भावना मृत को स्वीकार किया है, आज उनकी सारी भौतिक इच्छाएं और भूख चली गई है, और वो आज पूरे विश्व में भ्रमण करके हरि कथा न केवल आस्वादन कर रहे हैं पर पूरे दुनिया लोगों को बांट रहे हैं। बोले ये सबूत नहीं है, इतना हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि इनको कोई दवाई ववाई देके ब्रेन वॉश कर दिया, क्योंकि हमारे जैसे अभी रहे ही नहीं ये लोग। रूपा ने बोला एग्जैक्टली, हम लोग ब्रेन वॉशिंग ही करते हैं, तुम्हारे ब्रेन को हम लोग धोते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, ये धोना ही हमारा काम है। तो त्वन्मुखाम भोजम पूतम हरिकथामृतम, आपके मुखारविंद से ऐसे, तो महाराज परीक्षित एक चकोर पक्षी जैसे हैं, जो चंद्रमा से निकली हुई जो अमृत है सिर्फ उसका ही आस्वादन करती है। तो सुखदेव गोस्वामी का जो मुखारविंद है जहां से हरिकथा निकल रही है, चंद्रमा की उपमा दी गई है, हरि कथा को अमृत का उपमा दिया गया है, और परीक्षित महाराज के हृदय को चकोर पक्षी का एक उपमा दिया गया है, जो न केवल अमृत पान हो रहा है, आनंद दे रहा है, और जो अंधकार है हृदय का उसको भी दूर कर रहा है। और इस तरह से परीक्षित महाराज इतने मग्न थे, मृत्यु पास था, इसी तरह से हमारे स्थिति में भी मृत्यु आने से पहले, जो किसी समय भी आ सकता है, हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, और इस भौतिक भूख भौतिक प्यास ये भौतिक थकावट से अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे ये नेट प्रैक्टिस है, ये ओरिजिनल मैच होगा जब मृत्यु आएगा, उसमें बोलेंगे है अभी कृष्ण कथा नहीं हो सकता, थोड़ा ये लाओ वो लाओ। तो ऐसे जो बड़े बड़े उत्सव आते हैं, ऐसे उत्सवों में अगर हम भगवान की कथा नाम रूप गुण लीला इत्यादि में अपने आप को मग्न करने की कोशिश करते हैं, भले हमारे लिए भवौषधि औषधि के रूप में क्यों ना हो, मनोभिरामा नहीं हो, उपगीयमाना नहीं हो, कम से कम औषधि के रूप में कम से कम लेते रहो, ताकि एक न एक दिन ये भौतिक बीमारी भूख प्यास और थकावट दूर हो जाएगी, और एक दिन भले हमारी मृत्यु के समय शरीर की स्थिति बहुत दुर्दयनीय होती है, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। इसीलिए मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव, आज ही विशतु मे मानस राजहंस, क्यों प्राण प्राण समय कफ वाद पीते कंठावरोधन मिदो शरणम कुतस्ते, कैसा होगा उस समय, भूख नहीं प्यास है, कुछ खाया नहीं है, मन विचलित हो गया, इधर उधर भाग रहा है, उस समय कृष्ण कथा जैसे मैंने बताया, मेरी कजिन सिस्टर बता रही थी, बोले मन नहीं करता अभी जब, अब कुछ मन नहीं करता मुझे, मन कैसा करेगा जब पहले से नहीं लगाया हमने, तो यह अभ्यास है। जब तंदुरुस्त है, शरीर ठीक ठाक है, अगर इस समय थोड़ा अभ्यास नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो उस समय पता नहीं किस तरह से परिस्थिति आएगी, उस समय हो नहीं पाएगा। तो इसका हम प्रार्थना कर सकते हैं आज के शुभ दिवस पर, कि जिस प्रकार परीक्षित महाराज के चरित्र में हम देखते हैं क्या आतुरता थी, जिसके द्वारा भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में अवतरित हुए, परीक्षित को बचाने के लिए गर्भ में अवतरित हुए सबसे पहले अब उनकी मां के, और दूसरी बार बचपन में मरने मृत्यु से बचाने के लिए अपने स्वरूप में अवतरित हुए, मृत्यु के समय वहां भी ब्रह्म शाप द्विज शाप, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, इधर ब्राह्मण का वाक शाप वचन द्वारा शाप, वो भी ब्रह्मास्त्र है, उसमें से छूटना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी बड़ी आसानी से निकल पड़े वो, उस समय भी भगवान भागवत के रूप में अवतरित होकर उनकी भक्ति को बचाया और उनको भगवत धाम दे गए। तो इस तरह से परीक्षित महाराज की जीवनी को अध्ययन करके अगर उनके जो समुद्र जैसे गुण हैं उनमें से एक बूंद भी आतुरता तीव्रता और कृतज्ञता और दृढ़ता आ जाए तो हमारा जीवन सफल और शायद भगवान की कृपा हो जाएगी, महाप्रभु की कृपा हो जाएगी, प्रभुपाद जी की कृपा हो जाएगी, गुरु की कृपा हो जाएगी, वैष्णवों की कृपा हो जाएगी, और शायद भगवान का एक झलक मिल जाएगा किसी रूप में और हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरे कृष्ण।